问就还我。
Hare Krishna. Now I'm equipped fully.
So, भगवान ऐसी वस्तु है जो हम आंख से उनको देख नहीं सकते हमारी आंख से, क्योंकि हमारी आंखें जो है ना वो इम्परफेक्ट है. अगर मैं ऐसा कहूँगा कि हमारी आंखें इम्परफेक्ट है, आप उसको प्रूव कर सकते हैं? क्यों नहीं प्रूव कर सकते? मेरी अगर आंखें परफेक्ट होती तो मैं चश्मा क्यों पहनता? कॉमन सेंस ना, ये चश्मा बहुत लोगों ने पहना है इधर. लेकिन मैं अपना उंगली आंख के सामने पकड़ कर कह सकता हूँ कि मेरी उंगली जो है ना वो चांद से भी बड़ी है. बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? यस और नो? क्या लगता है आपको? ऐसा मैंने उंगली पकड़ा ऐसा और चांद को देखा, चांद भी कवर हो गया, इज दैट राइट और नॉट? लेकिन चांद मेरे उंगली से इतना साइज का है क्या? चांद तो बहुत बड़ा है, लेकिन आकाश में वो एक कप बशी होती है ना, कप बशी उतना दिखता है वो. लेकिन उतना है क्या? वो सूरज भी दिखता है, सुबह आता है सुबह तो लगता है कि ये एक बड़ा फुटबॉल का गोला लगता है. लेकिन वो कितना बड़ा है पता है ना आपको? लेकिन आंखों को दिखता कैसे है वो? फुटबॉल के बॉल की तरह. इसलिए हनुमान जी उसको देखकर छलांग मारे थे, बोले संतरा है, संतरा जो खाना है वो, इसलिए वो छलांग मारे थे. लेकिन संतरा था क्या? वो नहीं था, है ना. एक एग्जांपल दिया आपको मैंने कि हमारे इंद्रियों से हम भगवान को नाप नहीं सकते. मैं आपके बारे में अच्छा बोल रहा हूँ कि बुरा बोल रहा हूँ? अगर मैं रूम नंबर 5 में बैठ कर आपके लिए बुरा बोल रहा हूँ, आपको सुनाई पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा. आपके सामने आके बोलूंगा तो आपको सुनाई पड़ेगा. आपके कान के लिमिट के बाहर जाके बोलूंगा तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा. अमेरिका जाऊंगा आपके बारे में अच्छा बोलूंगा तो सुनाई पड़ेगा आपको? नहीं पड़ेगा. तो आँख का भी लिमिट है, कान का भी लिमिट हो गया, और आँखों का भी लिमिट है कि नहीं? कितना दूर देख सकता हूँ मैं यहाँ से? एक लिमिट है उसका, उसके आगे मेरे को लगता है कि वो टिपका है. आकाश में जाओगे ना हवाई जहाज में तो क्या दिखेगा? कुछ भी दिखेगा नहीं. कुछ समय के बाद में कुछ दिखता नहीं है, कुछ देर तक दिखता है फिर बाद में सब दिखना बंद हो जाता है. नथिंग इज सीन, घर नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, एकदम इनसिग्निफिकेंट हो जाता है. तो इस स्लाइड का मतलब ये है कि हमारी इंद्रियां जो है ना वो अपूर्ण है. आपको पता है क्या गुण धर्म का मतलब क्या होता है? यस, गुण धर्म की व्याख्या क्या है? गुण धर्म मतलब क्या होता है? हाँ यस, हाँ आपका अंदर का क्या है? अंदर में मतलब शक्कर का गुण धर्म क्या है? स्वीटनेस. और नमक का गुण धर्म क्या है? हाँ खारापन, है ना. और पानी का गुण धर्म क्या है? लिक्विड है ना पानी, वो उसको अगर तुम पानी को लेके फ्रिज के अंदर रखते हो, डीप फ्रिज के अंदर, तो क्या बनता है उसका? हाँ आप उसको पानी नहीं बोलते ना, बदली हो गया ना, वो था पानी लेकिन डीप फ्रिज में गया तो वो बदली हो गया. अगर उसको स्टोव पे रखा 20 मिनट तक तो फिर क्या बन गया उसका? बाफ बन गया ना उसकी. हाँ तो पानी तब तक पानी है जब तक वो लिक्विड है. पानी एक बार डीप फ्रिज में गया तो वो पानीपन खत्म हो गया उसका. वैसे ही शुगर के अंदर जब तक मीठापन है तब तक वो शुगर कहलाती है. अगर किसी प्रोसेस के अंदर आपने शुगर के अंदर से शुगर का मीठापन निकाल दिया तो वो केवल सफ़ेद पाउडर बनती है, उसको शुगर नहीं बोलेंगे आप. हाँ नमक से नमकीनपनता निकाल दिया आपने तो नमक नमक रहेगा क्या? नहीं. जैसे आजकल के नमक जो होते ना पाउडर बहुत बड़ी होती है सफ़ेद रंग की, लेकिन वो नमकीनता कम होती है उसके अंदर. डालते जाओ सब्जी के अंदर वो नमकीन होता ही नहीं. वो कला उन्होंने सीख लिया है कंपनी वालों ने, कैसे नमकीन से नमक से नमकीनता निकाल ली जाए और दिखाई वैसे दिखा जाए लेकिन नमकीन ना हो, वजन बढ़े लेकिन नमकीनता कम हो. ऐसा है सब. तो वैसे ही आपका और हमारा और हर जीव का कोई गुणधर्म होता है. वो क्या है बताओ? हर जीव का एक गुणधर्म होता है. ऐसे नहीं कि आप स्त्री हो इसलिए आपका अलग है, मैं पुरुष है इसलिए मेरा अलग है, वो बालक है इसलिए उसका अलग है, वो अफ्रीकन इसलिए अलग है. नहीं, मैं जीव का गुणधर्म की बात कर रहा हूं. कोई भी जीव, एक जीव उसके अंदर एक कॉमन जो वस्तु होती है, जगने की इच्छा होती है, जीने की इच्छा होती है ना. कुत्ता हो, बिल्ली हो, कीड़ा मकोड़ा हो या आप हो, सबको जीना है, किसी को मरना नहीं है. एक प्रवृत्ति होगी ना जीने की. ऐसे और कौन से गुण होते हैं जो जीव के लिए बहुत आवश्यक है? हाँ आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहे?
अच्छे और बुरे
कर्म, अच्छे और बुरे कर्म करने का। लेकिन मैं गुण धर्म पूछ रहा हूँ, गुण धर्म जो हर जीव को चाहिए ही चाहिए। यस, प्रेम चाहिए, प्रेम नहीं चाहिए क्या? कुत्ते का पिल्ला हो, ससे का पिल्ला हो, क्या बोल, कैट हो या इंसान हो या बालक हो या अफ्रीकन हो अमेरिकन हो या पंछी हो पक्षी हो, सबको प्रेम चाहिए, बराबर ना? ये जीव का सबसे बड़ा गुणधर्म है कि उसको प्रेम चाहिए, उसको प्रेम देना है और उसको प्रेम लेना भी है, और इसके बिना जीव का संतुष्टि नहीं होता है। उसके पास बहुत पैसा आएगा, बहुत धन दौलत आएगी, बहुत यश कीर्ति आएगा, उसका नाम होगा बड़ा, फिर भी प्रेम के बिना वो अधूरा रहता है। सही बात है क्या? ये गरीब आदमी बहुत, बहुत अमीर आदमी है, दोनों को भी प्रेम चाहिए, ये बहुत कॉमन चीज़ है। हाँ, और दूसरी बात शायद आपको पता नहीं होगा, तो मैं बताऊंगा आपको। हाँ, वो ये है कि सेवा करना ये जीव का गुणधर्म है। आप गौर से देखो, मुर्गी को देखो, कुत्ते को देखो, खरगोश को देखो, आदमी को देखो, पंछी को देखो, सब किसी ना किसी की सेवा करते रहते हैं। देखो आप, पंछी अपने बच्चे की सेवा करता है, कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करती है, हर जीव करता है, और आप भी करते हो। प्रधानमंत्री भी करता है कि ना सेवा, वो क्या बोलता है, मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा, मुझे वोट दो। सेवा के ही प्रॉमिस के ऊपर वो वोट लेता है और प्रधानमंत्री बनता है, मिनिस्टर बनता है। तो किसी को भी, अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट भी होना तो भी सेवा करना नहीं छोड़ता है। अरे, हमारे भगवान भी सेवा करते हैं अपने भक्तों की, भगवान होने पर भी, क्योंकि वो हमारे जैसे ही है, हम उनके ही अंश है, तो हमारे अंदर सेवा का भाव कहाँ से आता है? उनकी तरफ से आता है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। वो सच्चिदानंद है, इसलिए हम भी सच्चिदानंद है। ये भी हमारा गुणधर्म है, आप लिख लो इसका। पहले मैंने आपको बता दिया, सत मतलब क्या? जीना है हमको, क्योंकि हम लोग अमर है, हमारा स्वभाव मरने का नहीं है, हमारा स्वभाव हमेशा जीवंत रहने का स्वभाव है। अमर है हम लोग, सब लोग स्वभाव से, गुणधर्म से हम लोग अमर हैं। और चित्त का मतलब क्या है? सत का मतलब अमरता, चित्त का मतलब क्या है? ज्ञान। आपको हमेशा ज्ञान की इच्छा रहती है, मालूम करना होता है, क्या है ये, क्या है वो, क्या है ये, क्या है ये, ऐसा क्यों है वो, ऐसा क्यों है, ये कहाँ मिलता है वो कहाँ मिलता है, अन्न कहाँ मिलता है, कपड़ा कहाँ मिलता है, मकान कहाँ मिलता है, नौकरी कहाँ मिलती है, क्या काम करना होता है, क्या सीखना होता है, हमेशा हम प्रश्न पूछते रहते हैं। क्यों प्रश्न पूछते रहते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। और जानवर प्रश्न नहीं पूछता है, इंसान प्रश्न पूछता है। जानवर खाली जीते रहता है, जैसे टाइम आएगा वैसे जीते रहता है। टाइम आएगा तो बच्चे पैदा करता है, टाइम आए तो बच्चों को बड़ा करता है, टाइम आएगा तो भागता है, अपनी सुरक्षा कर लेता है, खाता है, पीता है, सोता है। हम भी वही करते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम लोग प्रश्न भी करते हैं नॉलेज प्राप्त करने के लिए। और तीसरा स्वभाव क्या हमारा? आनंद। सत, चित और आनंद। आनंद का मतलब क्या है? सबको आनंद चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? हाथ ऊपर करो, मुझे आनंद नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसा कोई है? कैन यू से दैट यू डोंट वांट हैप्पीनेस? अरे, हम लोग सब लोग मेहनत कर रहे हैं दिन रात, क्यों कर रहे हैं? सबको खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। और क्योंकि हमारे भगवान भी वैसे ही है, सच्चिदानंद, लेकिन वो बड़े सच्चिदानंद है, हम छोटे सच्चिदानंद है, इतना ही फर्क है बस। हम उनके छोटे से रूप हैं, वो बड़े हैं, मतलब सागर है और हम बूंद है। सागर में कई करोड़ों लीटर पानी होता है और बूंद में थोड़ा सा पानी होता है, लेकिन गुण का, बूंद का स्वभाव जो है वो सागर स्वभाव से ही होता है। सागर का पानी भी खारा होता है और बूंद भी खारे होती है, ऐसा समझ में आपको? वो विभू है, मतलब बड़े हैं, बहुत अनंत हैं, और हम अणु हैं, छोटे से हैं, इतना ही फर्क है। लेकिन उनके अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर भी है। वो भी आनंद को देखते हैं, वो भी प्रेम को देखते हैं, वो भी सेवा को देखते हैं, हम भी आनंद को देखते हैं, सेवा देते हैं, और हम भी प्रेम को देखते हैं। सेम है सब कुछ, हाँ, ध्यान रखना, भगवान हमारे से अलग नहीं है, हमारे पिता में और हमारे में सेम गुण होते हैं। जनरली देखो आप, दिखते भी सेम है हम लोग, हमेशा समानता है हमारे अंदर। वैसे परम पिता जो हमारे भगवान है, वो भी ऐसे ही है, हमारे जैसे ही है, खाली हम उनको भूल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर दुख भोग रहे हैं। तो धर्म जो है, मैंने बताया, धर्म का गुण धर्म यानी कि धर्म, हमारे अंदर से सेवा, प्रेम और आनंद निकाल देंगे ना, तो हम नहीं रहेंगे, हम कोई और बनेंगे। तो हमारा जो ये धर्म है, ये चार खंभे पर आधारित है, चार खंभे जिस पर हमारा धर्म आधारित है, वो ये है, एक है दया, दूसरा है पवित्रता यानी शुद्धि, पवित्र, हाँ, तीसरा है तपह, यानी कि तपस्या, यानी कि नियमों का पालन करना। कुत्ता बिल्ली नियम का पालन करते हैं क्या? कभी कुछ नहीं पालन करते, खाते पीते सोते हैं और सो जाते हैं। इंसान नियमों का पालन करता, सुबह उठता है, काम पे जाता है। कभी कुत्ता देखा है क्या 8 आवर्स ड्यूटी, 9 to 5, फर्स्ट ड्यूटी, सेकंड ड्यूटी, लास्ट ड्यूटी करता है क्या कभी? वो अपना स्वभाव से करते रहते, लेकिन कोई नियम का पालन नहीं करते। वो उनका जो भी गुणधर्म है वैसे करते रहते वो लोग। लेकिन इंसान के लिए बहुत नियम होते हैं। भगवान की प्राप्ति करनी है, जप करना होगा, हाँ व्रत करना होगा, मतलब मेरी का करना होगा, एकादशी का करना होगा, जन्माष्टमी का करना होगा, तीर्थ यात्रा करनी होगी, उपवास करना होगा, इतने सारे नियम पालन करने पड़ते हैं। नियम पालन करने की शक्ति केवल मनुष्य, भगवान ने मनुष्य को दी है और किसी को नहीं दी है। गाय को आप, वो सब्जी वाले के पास आएगी, उसका मुंह डालेगी सब्जी में तो वो डंडा मारेगा उसके ऊपर, थोड़ा पीछे हट जाएगी वो, कुछ देर बाद क्या करेगी, दोबारा आके मुंह डालेगी उसके अंदर। कितनी बार उसको डंडा मारो, 11 बार फिर आएगी वो, क्योंकि उसको वो ज्ञान नहीं है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो मार खाना अच्छा नहीं है, दूर में खाई घास खा सकती हूँ। तो क्योंकि उनको वो उतनी बुद्धि भगवान ने दी नहीं है सोचने की और करने की, ऑस्टेरिटी। और लास्ट है सत्य, सत्य बोलना, सत्य नहीं बोलना, ये केवल मनुष्य के लिए बात है, जानवरों के लिए नहीं है। वो तो बोल नहीं सकते, नहीं है उनके पास वाचा ही नहीं है। तो ये चार हमारे जीवन के पिलर है, जैसे बिल्डिंग कैसे ना खंभे पर खड़े होते ना बिल्डिंग, वैसे हमारा जीवन जो है इन चार पिलर पे खड़ा है। और ये चार पिलर जब तक हम लोग बढ़ाते हैं, हमारे अंदर की दया बढ़ाते हैं, नियम का पालन करते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य के ऊपर चलते हैं, और मन को, आत्मा को, शरीर को स्वच्छ रखते हैं, तो हमारा धर्म जो है, हमारा स्वभाव जो है वो बढ़ता है। तो स्वभाव क्या बताया मैंने आपको, आनंद, सेवा और प्रेम। ये जो स्वभाव है ये तब बढ़ता है जब ये चार मेन पिलर जो है ना उसको हम संभाल के रखते हैं। ये चार पिलर मिरर को अगर आप संभाल के रखेंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो हमारा प्रेम, सेवा और आनंद जो है वो बढ़ जाता है। इसको नष्ट करेंगे तो हमारे अंदर का प्रेम, सेवा और आनंद नष्ट हो जाता है। हम दुखी हो जाते हैं, प्रेम प्राप्त नहीं होता है, और कोई हमारी सेवा नहीं करता, हम किसी की सेवा नहीं करते। बिना सेवा किए आप जी नहीं सकते हो। आप कितना भी टालोगे सेवा करना, किसी की सेवा नहीं करूँगा, फिर भी आप अपनी सेवा करोगे। खुद को नहाना, नहाना, नहाओगे, खुद के बाल संवारोगे, खुद को खाना खिलाओगे, सो जाओगे, कम से कम अपनी सेवा तो हमको करनी ही पड़ती है, और किसी की नहीं करेंगे तो। बाय द वे, अपनी करने के बाद दूसरों को भी करनी पड़ती है। आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, आपको बच्चों को संभालना ही है, बीवी को, पति को संभालना ही है, घर वालों को संभालना ही है, वॉचमैन को तनख्वाह देनी है, या मालिक की सेवा करनी है, जॉब में जहाँ काम करते हैं वो अच्छा लगता है नहीं लगता है, खुद की सेवा करनी ही पड़ती है आपको। सेवा बाय डिफॉल्ट करना पड़ता है हमको, छोड़ नहीं सकते उसको। ये इंटरेस्टिंग है कि वो जो स्तंभ मैंने आपको बताए, हाँ, दया, इसको नष्ट कर दिया तो क्या होता है? ये नष्ट कैसे होती है? जब हम किसी की हत्या करते हैं, किसी को मार डालते हैं, या किसी को दर्द देते हैं, कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो दया क्या होती है? नष्ट हो जाती है। मैंने आपको कुछ गलत बात बोली, आपको हाथ भी लगाए नहीं मैंने, बहुत गोल 2-4 बातें गलत बताई बिना हाथ लगाए, फिर भी आपको रोएंगे आप कभी कभी, इतना बातों में शक्ति है। तो उसको कहते हैं हिंसा, वायलेंस। वायलेंस करने से दया नष्ट हो जाती है। और वायलेंस जो है ना वो कई प्रकार के होते हैं। ये मत समझना कि आपको एक चाटा मारना यही वायलेंस है। नो सर, जब पति अपने पत्नी को कुछ बुरे शब्द बोलता है ना, तो वो मारने से बड़ा वायलेंस है। कभी कभी पति पत्नी को हाथ भी लगाएगा नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द बोलेगा ना कि वो एकदम आत्महत्या करने में तुल जाएगी। वर्ड्स आर सो पावरफुल, है ना। तो शब्द से किया हुआ वायलेंस भी वायलेंस, बहुत भयंकर वायलेंस होता है। कभी कभी ना बड़े बड़े मालिक लोग हैं ना कंपनी के, एक साइन करके किसी कागज पे एक साइन करते हैं कोई करारनामे के ऊपर, और 500 लोगों की जिंदगी में वायलेंस कर देते हैं। बोले कंपनी लॉस में जा रही है, सबका पगार आधा कर दो, साइन कर दिया उसने, तो 50 लोगों के ऊपर, 500 लोगों के ऊपर क्रूरता होगी कि नहीं हुई? बिना सोचे एक साइन कर दिया, वो भी क्रूरता ही है, वो भी वायलेंस है। तो वो वायलेंस करने से जो हमारे अंदर स्वभाव से दया है वो नष्ट होने लगती है। क्योंकि स्वभाव से आप सबके अंदर दया है, सबके अंदर करुणा है, सबके अंदर प्रेम है, लेकिन ऐसा करने से वो नष्ट हो जाता है। नींद आती होगी तो खड़े रहो, हाँ मैं भी खड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे नींद आएगी तो कैसे चलेगा। समझो बोलने वाला सो गया तो लेक्चर खत्म. व्यभिचार करने से, व्यभिचार करने से मतलब क्या, शादी के बिना संबंध करने से, यह केवल मनुष्यों के लिए है, कुत्ता बिल्ली के लिए नहीं है. शादी के बिना संबंध करने से शुद्धि जो है मन की, वो नष्ट होती है. शुद्धि भी अनेक प्रकार की होती है, मन की होती है, वातावरण की होती है, रूम की होती है, बालों की होती है, शरीर की होती है, कपड़ों की होती है ना, कई प्रकार की शुद्धि होती है. आत्मा की शुद्धि भी होती है, मन की शुद्धि भी होती है, भावना की भी शुद्धि होती है. ये सब शुद्धि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अगर हमको एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी जीना है तो ये शुद्धि बहुत आवश्यक है हमारे लिए. हाँ, वो नष्ट होती है व्यभिचार करने से. व्यभिचार करने से मन की, भावना की, आत्मा की, शरीर की शुद्धि नष्ट हो जाती है. ये बाइबल में भी लिखा है. क्या लिखा है बाइबल में? दाउ शल्ट नॉट कमिट एडल्ट्री लिखा है ना कमांडमेंट्स के अंदर. क्यों नहीं, क्यों लिखा है ये? क्योंकि आत्मा की शुद्धि भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, और आत्मा की शुद्धि व्यभिचार करने से नष्ट हो जाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडल्ट्री. तीसरा, अगर कोई शराबी आदमी है और उसको आप बोलते हो कि कल आपको 5 बजे उठ के नदी में स्नान करना है, वो कर सकता है? वो कितने बजे उठता है? कोई भी शराबी आदमी, एवरेज शराबी आदमी जो होता है वो हमेशा लेट उठता है. कोई देखा आपने शराबी आदमी, शराब पिया हुआ है, रात को शराब पी के सो गया, लेकिन सुबह जल्दी उठ गया है 4 बजे? कभी नहीं हो सकता है. इसका मतलब यह है कि नशा करने वाला आदमी कभी भी कोई नियम का पालन नहीं कर सकता है. इसलिए विद्यार्थी दशा में पढ़ाई करते वक्त जो सिगरेट का आदि हो जाता है, नशा करता है, ड्रग लेता है, वो एग्ज़ाम पास नहीं हो सकता है. क्योंकि पढ़ाई करते वक्त जल्दी उठना, 8-8 घंटे पढ़ाई करना, कॉलेज जाना, क्लास अटेंड करना, नोट्स बनाना, एग्ज़ाम देना, ये सब नियम का पालन करना पड़ता है ना, तभी डिग्री मिलती है. लेकिन अपना करियर नष्ट कब होता है? जब पढ़ाई करते वक्त आपको कोई आदत लग गई बुरी, तो आपका करियर फिनिश हो जाता है. मतलब नियम पालन करने की जो प्रवृत्ति हमारी है, ऑस्टेरिटी, तपह, तपस्या करने की जो प्रवृत्ति है हमारी, वो नशा करने से नष्ट हो जाती है. फिर नशा वो सिगरेट की हो, दारू की हो, ड्रग्स की हो, या और कोई गांजा चरस किसी की भी हो, वो आदमी नियम पालन नहीं कर सकता है. यहाँ तक कि चाय कॉफ़ी भी उसी में आता है. इसलिए हमारे यहाँ पर चाय कॉफ़ी देते नहीं, क्योंकि वो छोटा सा हल्का सा नशा है, लेकिन है ज़रूर. क्योंकि उसको आप बंद करके देखो तो क्या होता है, तो वो पी रहे हो कुछ नहीं, आपको नशा करके ऐसे धुलने रहे हो, लेकिन 2 चाय रोज के आप बंद करो तो पीते हैं उसको, क्या होता है, तुरंत हेडेक होता है, प्लस कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, पता नहीं दिमाग ही नहीं चल रहा है, गणित भी नहीं हो रहा है, वो कैलकुलेटर भी रॉन्ग गणित कर रहे हैं, क्योंकि चाय नहीं पिया ना. चाय पिया तो फिर वो शांत हो गया, फिर अभी काम करने को तैयार है हम लोग. ये इसका प्रूफ है. अगर वो नशा नहीं है तो वो छोड़ने से आपको कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन नशा है इसलिए छोड़ने से कष्ट होता है. चाय है, कॉफ़ी है, कोको है, इससे आपको थोड़ा सा शक्ति मिलती है ना, सोता हुआ आदमी तुरंत जग जाता है चाय पीने से. क्यों? क्योंकि लीवर से ग्लूकोज को खींचता है वो बाहर और डालता है ब्लड के अंदर, फिर आदमी एकदम फ्रेश हो जाता है. लेकिन अगर आपने बहुत चाय पिया, हमने बहुत चाय पिया है पहले पढ़ाई करते वक्त, हम पढ़ाई करने के लिए जगह रहने के लिए चाय पीते थे बहुत, रात को रात पढ़ाई करने के लिए. लेकिन कुछ देर के बाद में, बहुत चाय पीने के बाद में, जो पढ़ रहे उसको याद ही नहीं आती है, और कुछ समझता भी नहीं, दिमाग पूरा भ्रमित हो जाता है, यू बी कन्फ्यूज इन द नाइट. एक लिमिट है उसका भी. लेकिन हर चीज़ जो निसर्ग के, प्रकृति के खिलाफ है ना, उसका कीमत चुकाना पड़ता है. प्रकृति कहती है रात को सोना है, आप कहते हैं रात को पढ़ना है आपको, तो आप चाय पी के जगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ कीमत, नुकसान आपको भोगना पड़ेगा उसका. इज दैट राइट? ऑल ऑफ अस नाइट, हमने नाइट भाई पढ़ाई किया है, 3 बजे सोए हम लोग, कई महीने तक किया हुआ है हमने, चाय पी पी के, डबल डबल चाय पी के, रूम पे बना के, हॉस्टल में बना के हमने पिया है, टू स्टडी 3-4 आवर्स इन द नाइट. लेकिन उसके करने के बाद में कुछ ना कुछ नुकसान तो होते रहता है, क्योंकि प्रकृति के खिलाफ आप काम नहीं कर सकते आप. ओके, लास्ट है सत्य. भगवान की दी हुई प्रॉपर्टी जब हम गलत काम में लगाते हैं तो हमारे अंदर का सत्य का जो प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाता है. द प्रोपेंसिटी ऑफ ट्रूथफुलनेस इन यू इज लॉस्ट व्हेन यू स्कॉन्डर द प्रॉपर्टी गिवन बाय गॉड टू यू, और मिस यूज द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड गिवन टू यू बाय गॉड. हर एक को भगवान ने कुछ ना कुछ दिया ना, कुछ ना कुछ धन दिया है, कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी दिया है, कुछ ना कुछ तो क्या कहते हैं उसको, पोजिशन दिया है ना आपको. आप कितने भी गरीब होंगे ना, कितने भी गरीब भिखारी होगा, तो भी उसके पास एक जोड़ी कपड़ा तो होगा ही होगा, एक डब्बा तो होगा भीख मांगने का कम से कम. तो किसी के पास, हर एक के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, और जहाँ जहाँ वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को गलत जगह इस्तेमाल करता है, उसके अंदर की सत्य की प्रवृत्ति ना सत्य की प्रवृत्ति वो नष्ट हो जाती है। सिंपल है समझने के लिए, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये चार तत्व है। हम लोग हॉस्पिटल में चार नियम का पालन क्यों करते हैं? वो चार नियम क्या है? मांस नहीं खाना। क्यों नहीं खाते हैं मांस? क्योंकि मांस खाने के पहले किसी भी जीव को मारना पड़ता है। बिना मारे हुए जीव को मांस बनता है क्या? मछली को खाना है तो मछली को मारना ही पड़ता है, तो हिंसा हो गई है ना, वायलेंस हो गया ना, वायलेंस। तो वायलेंस हो गया तो वायलेंस का फल खा लिया मांस के रूप में, तो क्या हो गया? मर्सी लॉस्ट। उसके बाद में व्यभिचार नहीं करते। हमारे हॉस्पिटल में स्ट्रिक्ट नियम है कि बिना शादी के कोई लड़का लड़की का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये हमारा स्ट्रिक्ट नियम है यहाँ का। कुछ कुछ लोग छुप छुप के करते रहते सब कुछ गड़बड़, लेकिन रूल ये है कि ये नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से वातावरण बिगड़ता है। बिगड़ता है कि नहीं? हॉस्पिटल का कितना भी बड़ा कर्मचारी हो छोटा कर्मचारी हो, अगर उसका किसी के साथ लव अफेयर है तो उसकी चर्चा होती कि नहीं होती है? वो आदमी कितना भी हाउसकीपिंग का हो या वॉचमैन हो या और भी किसी एकदम टेम्पररी हो या दो महीने के रखा हो, अगर उसका किसी के साथ में लव अफेयर है तो उसकी चर्चा बड़े से बड़े लोग भी करेंगे, मीटिंग में भी उसका विषय आएगा, उसके चाय पीने वक्त तभी भी आएगा, कैंटीन में भी आएगा, बस में भी आएगा, आते वक्त भी डिस्कस करेंगे उसको, क्योंकि विषय ही ऐसा है वो। समझो आपने सोचा कि डॉक्टर शानबाग को हमने किसी औरत के साथ में देखा था उधर वो दिन समुद्र में, तो सब लोग चर्चा करेंगे यहाँ बैठ के। खाली देखा था आपने और कुछ नहीं होगा, खाली देखा आपने किसी लड़के के ऐसे गंदे में हाथ रखे वो समुद्र में बैठे थे, शादीशुदा है, उनको दो बच्चे भी हैं, हॉस्पिटल डायरेक्टर हैं। लेकिन जब ये आप मेरे में देखेंगे तो आप सब लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर आके, सब चर्चा करेंगे कि नहीं? जितना बड़ा मेरा पद होगा उतना ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा जरूर करेंगे। उससे क्या होगा? वातावरण खराब होगा। जो वातावरण, जो चर्चा आप किसी और विषय की कर सकते हैं उसके बदले में आप इसकी चर्चा करते रहेंगे। आप लोग सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं मुझे क्या बोल रहे हैं? व्यभिचार ये विषय ही ऐसा है। आदमी बड़ा हो छोटा हो कैसे भी हो, अगर उसका शादी के बगैर और शादी के बाहर कोई संबंध का काम होता है तो उसकी चर्चा होकर सबका मन और हंसते हैं जोक करते हैं, लेकिन उसके बारे में चर्चा करेंगे वातावरण बिगड़ता है। इसलिए हमारे हॉस्पिटल में हम लोग उसको अलाउ नहीं करते। आप लोग शादी करो, आपको प्रेम हो गया है, शादी करो अच्छी तरह से पिता माता के सम्मति से और पति पत्नी मन के काम पे आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लव अफेयर करके व्यभिचार नहीं करना है। दैट इज़ नॉट करेक्ट, वो इंसान के लिए अच्छा नहीं है। लगता अच्छा है करने के लिए, बहुत थ्रिलिंग होता है वो, लेकिन अच्छा नहीं है हमारे लिए। और लास्ट है गैम्बलिंग। ये हॉस्पिटल में किसी प्रकार का कोई चिट फंड कोई दिवाली फंड करते हैं हम लोग? नहीं करते हैं। हमारे पास पतपेड़ी है, हम लोग पैसा भरते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, लोन भी देते हैं उसके ऊपर, तो फिक्स्ड है। उसके मालूम है आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, कितना पैसा मिलने वाला है, कितना डिपॉजिट है आपका, कितना महीने बाद कितना बनेगा, सब पता है आपको। लेकिन आप 10 रुपये भरो दिवाली में आपको 1000 मिलेगा, आपका नंबर लगेगा लॉटरी में तो आपको 1000 मिलेगा, ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि वो गैम्बलिंग है। आपको प्रलोभन दे रहे हैं कि मैडम पुट 10 रुपीज़ ओनली, हो सकता है लॉटरी में आपका नंबर आएगा ना, आपको 1000 मिलेगा उसका, और अगर आपका नंबर नहीं आया तो क्या हो गया? आपका 10 रुपया गया। ऐसे बहुत लोग के 10 रुपये जाते हैं और किसी एक को मिलता है, लेकिन सबको एंग्जाइटी होती है मेरा नंबर आएगा क्या, मेरा नंबर आएगा क्या, आता है किसी एक का नंबर, और बाकी सबको एंग्जाइटी होती है। गैम्बलिंग करने से ऐसी एंग्जाइटी होती है, और गैम्बलिंग करने वाला व्यक्ति जो होता है वो सत्य बोल नहीं सकता है, उसको चीटिंग करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। अरे कुछ भी करके मेरा नंबर निकालना यार, मैं आपको 10 रुपये दूंगा, 20 रुपये ब्राइब दूंगा, लेकिन तू कैसा भी करके मेरा नंबर निकाल दे, क्योंकि वो लाभ प्राप्त करने के लिए ना आप झूठ बोलने के लिए प्रवृत्त हो जाते हो, क्योंकि आपको वो चाहिए, यू वांट दैट, बिना मेहनत किए 10 रुपये का 1000 रुपये मुझे चाहिए, वो गैम्बलिंग है। इसलिए हमारे यहाँ पर वो नहीं होता है। और आप जानते ही हैं, आपने महाभारत तो सुना होगा, हमारे धर्मराज इतने बड़े भक्त थे भगवान के, उन्होंने भी जब गैम्बलिंग खेला तो क्या हो गया देखा ना, सर्वनाश हो गया उनका पूरा। अच्छे अच्छे बड़े बड़े भाई थे, उनके पत्नी थी, सब लोग जंगल में गए, 14 साल तक जंगल में रहे, नंगे पैर घूमे, हाँ कंदमूल खा के रहे, वो लोग झोपड़ी में रहे राजा के पुत्र होने के बावजूद भी। क्यों? गैम्बलिंग खेला। गैम्बलिंग उनको बोला तो तुम हार गए हो, गेम ख़त्म करो। नहीं नहीं, मैं हार गया तो क्या हुआ, मेरी पत्नी है ना, मेरे भाई है ना, सबको दांव पे लगाया और साहब हार गए और जंगल में चले गए। इसलिए बड़े से बड़ा आदमी भी, अच्छे से अच्छा आदमी भी जब जुआ खेलता है ना, तो उसका सर्वनाश ही होना है, याद रखना। जुआ खेलने से आज तक किसी का भी कल्याण नहीं हुआ है। कुछ समय के लिए पैसा आया है, उसके बाद में उतना दुगना पैसा चला गया है उसका। कुटुंब बर्बाद हो गए हैं, परिवार बर्बाद हो गए, समाज बर्बाद हो गए हैं, देश बर्बाद हो गया है जब कोई जुआ खेलता है। क्योंकि तो जुआ खेलने वाला आदमी कभी भी सच नहीं बोल सकता है। तो एग्री विद मी? नशा करने वाला आदमी सच नहीं बोल सकता है, बोलेगा मम्मी बहुत पैसा चाहिए, घर में जाके तुरंत चांदी का बर्तन चुराएगा, बेचेगा और ड्रग लेगा। मेरा फ्रेंड था ऐसा, क्लोज फ्रेंड, ड्रग में गया, रैंक होल्डर था, IIT में भी रैंक होल्डर था, ड्रग एडिक्ट बन गया, घर का सारा सामान फंसा फंसा के लेके गया और चोरी करके उसको बेच दिया ड्रग के लिए, कंगाल कर दिया पूरे घर को उसने। एक लड़के नहीं, बुद्धिमान लड़का था वो, लेकिन नशा करने से, जुआ खेलने से किसी का भला नहीं होता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसलिए हमारे हॉस्पिटल में हम लोग कुछ नियम पालन करते हैं, आप सबको पता होना चाहिए ये क्या नियम है, क्योंकि आपको अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे, आपको यहाँ पर रहना है तो ये आपको करना ही है, इसमें आपको चॉइस नहीं है। सर सर मैं सब करूँगा लेकिन चाय पीना चाहता हूँ, नो सर, ये दिस इज नॉट, देयर इज नो चॉइस हियर, ये मस्ट है, मतलब अगर यहाँ रहना है तो ये करना ही है। अगर पुलिस में वर्दी काम करना है तो वर्दी पहननी पड़ेगी, सिंपल, इतना सिंपल काम है वो। हम लोग यहाँ पर मांस, मछली, अंडा, मशरूम, कांदा, लहसुन, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, लहसुन कांदा भी क्यों नहीं बाद में बताऊँगा, यहाँ पर अलाउड नहीं है। टी कॉफ़ी यहाँ पर देते नहीं हैं, हर्बल टी पिलाते हैं। यहाँ पर सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, पान परा, क्या क्या उसका जो है ना भाई बहन कोई यहाँ पर अलाउड नहीं, उसका कोई प्रकार के नशा यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकती है। लोग छुप छुप के फिर भी पान परा खाते और फेंकते हैं, हमारे पेशेंट के रिलेटिव्स वगैरह वगैरह। कोई कोई नाइट स्टाफ जो है ना, वो छुप छुप के रात को, कोई भी स्टाफ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं है, खाते हैं और आपको बाथरूम में मिलता है वो सब, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो ये नियम क्यों बनाया है। हाँ, ये डॉक्टर शानबाग को ये सब अच्छा लगता नहीं, इसलिए वो बंद कर दिया हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं है सर, इसमें आपके हित की बात है, कल्याण की बात है। ये गुटखा खा के किसका भरा हुआ है क्या? कभी भी नहीं हुआ है। सिगरेट पी के किसका भला हुआ है? शराब पी के किसका भला हुआ है क्या? अच्छा लगता है बहुत कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में बहुत नुकसान होता है उसका। किसी परिवार का आज तक अच्छा हुआ है क्या शराब पी के? कभी भी नहीं हुआ है। और शराब नहीं है, व्यभिचार अलाउड नहीं है, गैम्बलिंग अलाउड नहीं है, और लास्ट जो है एबॉर्शन, जो मैडम ने आपको समझाया ना अभी, पूरा बताया होगा ना क्यों नहीं करना है। ये भी ऐसा ही परमार्थ की बात है, जब मैडम ने आपको एबॉर्शन के बारे में बताया, उनको उसमें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद तो एबॉर्शन करेंगी नहीं और किसी को करवाएंगी भी नहीं। आपको क्यों बता रही वो? आपके जीवन में ऐसा कोई प्रश्न आएगा, कसौटी आएगी कि बच्चा नहीं चाहिए मुझे, तो उस समय क्या करना चाहिए और क्या करेंगे तो क्या होगा? एबॉर्शन करेंगे तो क्या होगा, क्या परिणाम होगा, और नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये सब समझाने के लिए आपको किया है। हम तो जीवन में कभी नहीं करेंगे, 50 बच्चे भी होंगे तो भी नहीं करेंगे, उसके लिए प्रिकॉशन लेंगे, लेकिन अगर होना ही है, बच्चा आ ही रहा है रास्ते पर, तो उसको मारेंगे नहीं, उसको आने देंगे, क्योंकि वो भगवान का जीव है, जैसे हम और आप आज यहाँ क्यों बैठे हैं बताओ। मैडम आपकी उम्र कितनी है? सॉरी टू नो, 30-35 होगी आपकी उम्र है ना? योर एज 30-35 ईयर्स। हाँ, आपकी उम्र कितनी है? कि 30 उम्र है, मेरी उससे ज़्यादा है। हम लोग इतने साल आज इस जीवन में क्यों खड़े हैं, क्यों जी रहे हैं बताओ? क्योंकि आपकी माता ने आपका एबॉर्शन नहीं किया मैडम, योर मदर ने आपका एबॉर्शन नहीं किया, इसलिए हम लोग जीवन जीवंत यहाँ पर खड़े हैं आपके सामने लेक्चर दे रहे हैं। अगर मेरी माता ने मेरा एबॉर्शन कर दिया होता तो मैं यहाँ पर नहीं होता आपके सामने। और जितना आपको आपके ज़िंदगी पर आज प्रेम है, उतना ही उस बालक को भी जिंदगी पर प्रेम है जो माँ के पेट में बैठा हुआ है। जस्ट बिकॉज ऑफ वो पेट में बैठा है इसलिए उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई भावना नहीं, ऐसा होता है क्या? खाली उसको वाचा नहीं है, शक्ति भी नहीं है, और असहाय बेचारा अंदर घूम रहा है वो, और आप तय करते हो उसके लिए कि तू नहीं जिएगा, मुझे जीना है अच्छी तरह से, तुझे मरना होगा। ये हम लोग तय करते हैं, ये इंसानियत नहीं है, दिस इज बिगेस्ट वायलेंस। हाँ, एनीवे, हमारे हॉस्पिटल में एबॉर्शन का इक्विपमेंट भी नहीं है, एबॉर्शन का मशीन भी नहीं है। DNC का है, क्योंकि DNC का और किसी बहुत चीज़ में करते हैं, DNC का है। एबॉर्शन करने का यहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है, हम लोग सलाह भी देते नहीं है किसी को। पेशेंट बोलेगा सर आपके हॉस्पिटल में आप करते नहीं, मुझे पता है, लेकिन कम से कम बोल दो ना कहाँ होता है, हम जो जाके वहाँ करेंगे, आप मत करो। हम बोलते हैं आप सलाह भी नहीं देंगे आपको, क्योंकि सलाह देने वाला भी उसमें गुनहगार होता है। हाँ, आप मर्डर नहीं करते हो, लेकिन आप बोलते हैं ना, आप ना दादर में वो आता है 9 बजे, वहाँ उसको आप पकड़ सकते हो, आपने कुछ बोला नहीं उसको मर्डर करो वगैरह, आपने खाली इन्फॉर्मेशन दिया, सर आपको जो आदमी चाहिए ना वो 9 बजे रोज वड़ा पाव खाने के लिए दादर में आता है, इतना काफ़ी है ना उसके लिए मर्डर करने के लिए, बराबर 8:30 को वहाँ पहुँच जाएगा, गन ले खड़ा रहेगा, आते ही वो उसको शूट कर देगा। आपने मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, नहीं आपका इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए आप भी उस खून के अंदर गुनहगार हो। दाऊद किसका मर्डर करता है क्या, सुना है आपने कभी, दाऊद किसी का मर्डर नहीं करता है, खाली वो बैठ के फ़ोन करता है और लोग मर्डर करते हैं उसके लिए, लेकिन दाऊद पर भी केस लगता है ना कि नहीं लगता है, ऐसा ही है, सिंपल बात है वो। कभी कभी हमारे इशारे से भी खून होते हैं, कभी कभी वो खाली ऐसे बोलेगा ऐसा करता है वो, फिर वो उसका खून हो जाता है खाली इशारे से ही। इस तरह से इसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी, हाँ षड्यंत्र बोलते हैं उसको। तो वैसे एबॉर्शन में अगर आप बता भी देंगे, हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन आप ना इंदिरा नर्सिंग होम में जाओ वहाँ पर होता है, तो वो करेगा ना वहाँ जाके कि नहीं करेगा, वो करेगा आपके बोलने से करेगा ना कि आपने उसको गाइड किया कि वहाँ जाओ वहाँ होता है। हम वड़ा नहीं बेचते हैं लेकिन वो वहाँ वड़ा मिलता है आप खा सकते हो, तो जाके वो खाली हाँ सुन के चुपने बैठेगा, जाके वहाँ जाएगा वड़ा खा के आ जाएगा कि आपने उसको नॉलेज दिया है। तो ये हमारे बिल्डिंग में नहीं होता है, याद रखना। और आपको अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप यहाँ से काम छोड़ के जा सकते हो, हमको कोई दुख नहीं उस बात का, यहाँ रहना है तो आपको ये पालन करना ही पड़ना है। आज हमारी ये कोशिश ये है कि ज़बरदस्ती आपसे पालन करवाने के बदले में आपको ये समझाया जाए कि ये क्यों है ऐसा, तब आपको पता चलेगा कि मेरे हित की बात है तो दिल से आप उसको फॉलो करेंगे। जो आदमी रात को छुप छुप के ड्यूटी पर जेब में से पान परा निकलता है खाता है, मतलब उसको अभी तक पता नहीं है कि ये गलत क्यों है, उसको पता नहीं, नॉलेज नहीं उसको, अज्ञान में है, इसलिए वो नियम होते हुए भी आँख चुरा कर छुप छुप के गुटखा तंबाकू पान मुंह में रख के काम करता है, क्योंकि उसको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अज्ञान जो है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है कि नहीं। उसको पता नहीं है कि मैं कैंसर हुआ मुझे मुंह में डाल के बाद में कुछ साल के बाद कैंसर होगा, मेरा मुंह जबड़ा काटना पड़ेगा मुझे जिंदा रहने के लिए, कितना खराब दिखेगा उसमें, कितना दर्द होगा उसके अंदर और कितना पीड़ा और कष्ट होगा उसके बाद में, उसको पता नहीं। आज वो मजे से गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसको पता नहीं कि कुछ साल के बाद में उसको लंग का कैंसर होगा, मर जाएगा वो 24 साल की उम्र में। 10 साल अगर लगातार सिगरेट पिएगा, 50 सिगरेट पर दिन पिएगा तो 24 साल की उम्र में कैंसर होके वो मर जाएगा। छोटे छोटे बच्चे रोएंगे उसके कि पिताजी गुजर गए, आसरा चला गया, खाना पीना बंद हो गया, बीवी भी रास्ते पे आएगी, काम करने लगेगा उसको, क्यों, सिगरेट पीना उसको अच्छा लगता था, अज्ञान था उसके मन में। इसलिए ये सब नियम ज़बरदस्ती से आपको आपके द्वारा फॉलो करने के बदले में अगर ज्ञान से आपको फॉलो करवाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। फिर हमको रात को टॉर्च लेके आना नहीं पड़ेगा, कौन तंबाकू खा रहा है, कौन शराब पी के बैठा है, यहाँ तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज्ञान दे दिया ना, ज्ञान ही बैटरी की तरह है, टॉर्च की तरह है वो आपको दे दिया तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि मेरे को नहीं करना है काम, क्योंकि कम से कम दुनिया के लिए नहीं अपने लिए कम से कम आदमी स्वार्थी होता ही है, अपने हित में काम करता है कम से कम। अगला तो टंग है ना, टंग हमारा जबान जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, उसके अंदर हड्डी नहीं होती है, इट्स ओनली फ्लैश, लेकिन वो ऐसा ऐसा काम करती है एक वो जबान से कोई एक वाक्य बोल दिया ना जिंदगी भर याद रहेगा आपको, तुमने ऐसा मुझे क्यों बोला उस समय, मेरे शादी के समय तुमने मेरे गहने उतारने को क्यों बोला, शादी के 50 साल हो गए फिर भी वो जो औरत है ना जो आज बुढ़ी औरत हो गई उसकी भी बेटी की शादी हो गई लेकिन उसको अभी भी याद है कि मेरे शादी के समय मेरे सासू मुझे ऐसे क्यों बोली, मैं माफ़ नहीं कर सकती उसको, उसने मुझे 2 घंटे में जेवर उतारने को क्यों बोला, क्योंकि जबान से बोला ना, ये जबान है ना बहुत कहीं भी हिलती है तकलीफ होती है उसकी। इतनी बड़ी बोट होगी ना समुद्र के अंदर, बहुत बड़ी बोट, उसको दिशा कौन देता है, बहुत बड़ी बोट है, इसके अंदर बिल्डिंग भी है अंदर उसके, आप अभी आज ऐसे ऐसे बोट आ गए इसके अंदर बिल्डिंग भी रहती है, उसके अंदर 5-स्टार होटल भी रहता है बोट के अंदर, और वो बोट जो है यहाँ से अमेरिका जाता है कई महीने तक, लोग एंजॉय करते करते जाते हैं अमेरिका में। लेकिन इतनी बड़ी बोट को दिशा देने के लिए क्या होता है बताओ, हाँ यस कोई बोला क्या होता है, अरे विभूति बोलो कम से कम, यू आर आईटी मैन यार, यस यस, एक यंत्र होता है जो बोट को दिशा देता है, होका यंत्र, मैग्नेट, मैग्नेट वो दिखाता है नॉर्थ किधर है, फिर उसके बाद में मालूम पड़ता है राइट लेफ्ट नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, द स्मॉल मैग्नेट यू नो दैट स्मॉल मैग्नेट समुद्र के अंदर सब जगह पानी ही पानी है, ईस्ट में पानी है, वेस्ट में पानी है, नॉर्थ में पानी है और साउथ में पानी है, जाना किधर है मालूम नहीं है, तो वो होकर अंदर देखते हैं ऐसा तो मालूम पड़ता है कि हाँ नॉर्थ इधर है तो यहाँ ईस्ट होगा, तो टर्न करो यहाँ पर। हाँ तो वो कितना सा होता है क्या, वो इससे इतना आधा होता है, इसका आधा होता है, और वो चीज पूरे भयंकर बोट को दिशा बदलता है पूरा उसकी। वैसे हमारी जीवन की दिशा जो है ना, ये जो हमारा है ना रडर, ओका यंत्र, मैग्नेट, जबान, वो कर सकता है आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा ये। अगर कुछ गलत बोलेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आप, सही बोलेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, और भगवान का नाम लेंगे तो भगवान के धाम में पहुँच जाएंगे इसी जबान से, याद रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो। और जबान दो काम करती है, एक खाती है स्वाद और एक बोलती है, तो दोनों चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे बताएंगे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसका, ठीक है। तो आज हम विशेष रूप से हमको क्या खाना चाहिए, मैं अभी ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा उसको, संक्षेप में बताऊंगा आपको। मैं आपको विश्वास रखता हूं कि आप सब लोग बुद्धिमान हो और कम से कम अपना हित चाहते हो, इज दैट राइट? कम से कम, मैं आपसे बड़ी उम्मीद नहीं करता हूँ, खाली इतनी उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आप अपना हित चाहते होंगे, अपना स्वार्थ तो कम से कम चाहते होंगे। उसी हेतु से, उद्देश्य से ये आज का डिस्कशन होगा हमारा। तो मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और कई कारण हैं इसके, शरीर के कारण है, मन के भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, और नीति के कारण भी है, पर्यावरण के कारण भी है, कर्म के कारण भी है, और स्पिरिचुअल कारण भी है। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है, और आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और एक में 2 है सोशियो इकोनॉमिकल, 8 लेवल के कारण है, उसमें एक हिस्सा खाली स्पिरिचुअल है बस, बाकी सारे कारण जो है ना आपके शरीर के, आपके हेल्थ के ऊपर डिपेंड है। ये मत समझना कि डॉक्टर शानबाग जो है ना वो हरे कृष्णा के बहुत पुराने भक्त हैं और हरे कृष्णा में मांस नहीं खाते हैं इसलिए उन्हें अपने मर्जी से यहाँ पर मांस कैंसिल कर दिया है, ऐसा नहीं है सर। उसके हेल्थ के रीज़न हैं, समाज के रीज़न हैं, मन के रीज़न हैं, और लास्ट रीज़न जो आध्यात्मिक रीज़न है, बाकी सारे रीज़न जो है वो आपके निजी स्वार्थ से निगड़ित है। ओके, एक सिंपल सी बात है, शेर के मुंह में मुंह खोल के देखो और आपके मुंह खोल के देखो, कुछ फर्क लगेगा आपको कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, कि नहीं लगेगा? यस, कोई बता सकता है क्या शेर के दांत में हमारे दांत में क्या अंतर है? अरे शेर के दांत हड्डी तोड़ने के लिए काफी होते हैं, हमारे दांत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शेर तो खटाखट कच्चा कच्चा मांस हड्डी तोड़ के खाता है, शार्प, और होता ना वो क्या बोलते हैं, कैनाइंस बोलते हैं उसको। कितने होते हैं वो? 16 होते हैं उसके मुंह के अंदर, हमारे अंदर 4 होते हैं, तो एक ऊपर यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, वो भी लंबे लंबे मुंह से बाहर निकलते क्या वो? लेकिन शेर के बाहर निकलते ना मुंह के दांत होते हैं इतने से, लेकिन वो तो होते ना वो लंबे होते हैं, यहाँ से भी ऊपर आते हैं, यहाँ से ऊपर आते हैं। कुत्ते के भी देखो, बिल्ली के भी देखो, जो जीव मांसाहारी है उसके भगवान ने ही उसके दांत बड़े बड़े दिए हैं। जो शाकाहारी है, गाय देखो इतना बड़ा मुंह है उसका, लेकिन दांत देखो कैसे होते हैं, एक लाइन में होते हैं। घोड़ा देखो, बैल देखो, होता है कि नहीं, बकरी देखो, दांत सबके होते हैं, लेकिन उनके दांत के एक स्टाइल है, एक तरीका है उस दांत का, वो बताता है हमको कि ये ना शाकाहारी प्राणी है, ये सब्जी पाला खाता है, ये मांस नहीं खाता है, आप दांत देख के समझ सकते हो। और मनुष्य का कैसा है? वैसे ही है जैसे घोड़े का, गाय का, बंदर का है ना, वैसे मनुष्य का है, मतलब मनुष्य भी स्वभाव से शाकाहारी है। अभी पे लिखा है पीएच ऑफ स्टमक लिखा है, ये तो थोड़ा टेक्निकल टर्म है, मैं आपको बताऊंगा उसका मीनिंग क्या है। समझो मैंने आपका नाम क्या, पप्पी कुमार के पेट में हाथ डाला, सीधे डॉक्टर है ना मैं, तो दवाई करके हाथ डाल दिया अंदर, तो उसके पेट के अंदर एसिड है ना, एसिड जो खाना हजम करता है, तो क्या होगा, मेरे उंगली को सरा चर्र हो जाएगा, थोड़ा लगेगा, गर्म लगेगा थोड़ा सा। लेकिन समझो मैंने गलती से कभी शेर के पेट में हाथ डाला, दो उंगली डाली है, पूरा हाथ नहीं डाला, दो उंगली टेस्ट करने का, टेस्ट करने के लिए दो उंगली डाल दिया अंदर, यहाँ तक डाल दिया, तो क्या होगा, वापस निकालूंगा ना, दो उंगलियाँ नहीं रहेंगी उसके अंदर, दो उंगली माइनस, 5-2 क्योंकि उसके अंदर एसिड इतना पावरफुल होता है कि वो कच्चे हमारे मांस को हजम कर डालता है पूरा हड्डी के साथ। इतना एसिड क्यों दिया है शेर को भगवान ने? क्योंकि वो कच्चा मांस खाता है, कच्चा मांस उसका आहार है, इसलिए भगवान ने उसको हजम करने के लिए इतना सारा स्ट्रांग एसिड दिया है। और हमें उतना स्ट्रांग एसिड नहीं दिया है क्योंकि हम लोग शाकाहारी हैं, हम चना चवली मटकी मसूर सब्जी गोभी ये सब खाते हैं, इसलिए हमारे लिए वो कम एसिड पर्याप्त है। और लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन्स हमारे आते हैं ना आते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है मालूम है क्या? हमारे आते अगर फैलाएंगे ना लंबी करेंगे ना 6 मीटर के आते होते हो, इधर गोल गोल करके रखा है उसके अंदर, इतनी लंबे आते किसकी होती है? जिसका आहार शाकाहारी होता है उसकी आते लंबी लंबी होती है। शेर की आते बहुत कम होती है क्योंकि शेर के पेट में एसिड के अंदर ही 90% उसका डाइजेशन पेट में ही समाप्त होता है, थोड़ा बहुत बचता है, थोड़ी बहुत आंतों में काम खत्म करके वो काम बाहर फेंक देता है उसे। लेकिन शाकाहारी आदमी का जो शाकाहारी प्राणी का जो खाना होता है ना वो उसका 90% जो हजमा है वो आंतों में होता है, 10% जो हजमा है वो पेट में होता है। यू एग्री विद मी? थोड़ा आपका मैं बायोलॉजी रिवाइज कर रहा हूँ, ह्यूमन बायोलॉजी आई एम रिवाइजिंग, हाँ फिजियोलॉजी। 10% 20% आपका जो खाना है शाकाहारी खाना उसका हजमा पेट में होता है, और 80% 90% जो डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में होता है, एब्सॉर्प्शन एसिमिलेशन। इज दैट राइट? इसलिए शाकाहारी आदमियों में शाकाहारी प्राणियों में इंटेस्टाइन बहुत लंबे होते हैं। आप बंदर का देखो, हाथी का देखो, घोड़े का देखो, बैल का देखो, गाय का देखो, लंबी लंबी आंतें होती हैं। तो इससे हम साबित कर सकते हैं कि मनुष्य का आहार जो है वो शाकाहार है, मांसाहार नहीं है। यह हो गया शरीर का कारण। फिर भी मनुष्य जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके नॉन वेज खाना पकाकर उसको कुक करके बेक करके स्पाइस डाल के अदरक मिर्ची मसाला डाल के उसको खाने का प्रयास करता है तो क्या होता है? उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको हार्ट अटैक आता है। हाँ, अभी ये तो बहुत बड़ा साइंस है, मैं आपको इसमें बोर नहीं करूँगा, ये हमारा मेडिकल विषय है। आपको समझना इतना ज़रूरी है कि जो आदमी मांसाहार करता है उसका वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियाँ लगती हैं, क्योंकि वो जो चर्बी प्राणियों के शरीर में होती है वो मनुष्य के शरीर में हजम नहीं होती है, वो खून में घूमती रहती है, जो खून के अंदर के हिस्से में जमा होती है हार्ट में जमा होती है, फिर उसको हार्ट अटैक आता है। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? सिंपल में बताया आपको मैंने, आपकी भाषा में बताया सिंपल। उसके बाद में जब कोई जानवर मरता है तो तुरंत उसके अंदर कीड़े मकोड़े बढ़ने लगते हैं। आपके घर में अगर किसी की डेथ होती है तो आप बोलेंगे क्या? 8 दिन रहने दो, मुझे बहुत प्रेम है उसके ऊपर, मैं इनको छोड़ नहीं सकता हूँ। आप क्या बोलेंगे? जल्दी निकालो तुरंत, या दफनाओ या जलाओ जो भी करो तुरंत। कोई आ रहा है कि अमेरिका से, चलो बर्फ़ में रखो, लेकिन 2 दिन के बाद निकाल दो उसको। बर्फ़ में क्यों रखते हैं उसको? सड़ता है ना वो। कोई भी व्यक्ति प्राणी जब मरता है तो तुरंत उसका शरीर सड़ने लगता है। इज दैट राइट और नॉट? मतलब जंतु का उसमें प्रादुर्भाव होता है, जंतु उसमें बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं और वो दुर्गंध आती है, इसलिए हम लोग अगरबत्ती लगाते हैं घर पे, मैयत को देखने को आते हैं लोग तो अगरबत्ती लगा कर रखते हैं। तो वही चीज़ केवल इंसान को नहीं होती है, कुत्ता बिल्ली बकरी मुर्गी जिसको भी काट के खाते हैं ना सुअर, ये सबका शरीर मारने के बाद तुरंत उसका सड़ना आरंभ होता है। जंतुओं की संख्या हजारों में और करोड़ों में बढ़ जाती है उसके अंदर, और वो सारे हमारे भोजन के अंदर से पेट में जाते हैं। इसलिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, डिसेंट्री, डायरिया, स्टमक कैंसर, इंटेस्टिनल कैंसर, पेट का कैंसर, ये सब जो ज़्यादा होता है उन लोगों में जो मांसाहार करते हैं, क्योंकि लगातार वो करोड़ों करोड़ों जो है बैक्टीरिया है जंतु है उसको खाते रहते हैं खाने के अंदर से। आपको लगा कि हमने पका दिया उसको ओवन में 300 डिग्री में पकाया, कुकर में पकाया, गैस पे पकाया, मसाले से पकाया, लेकिन फिर भी वो जंतु का जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो बढ़ते रहता है उसके अंदर, और हमें जाने अनजाने में मांस के स्वाद के साथ में ये सारे जंतु को स्वीकार करना पड़ता है पेट में। इसलिए मांसाहारी लोगों के लिए ये रोग ज़्यादा पाए जाते हैं। एक और बात बताई गई है, एक्सेस लोड ऑफ पैरासाइट्स। प्राणियों के शरीर में वो होते हैं कृमि, कृमि आते हैं आप, कृमि मतलब गोल कृमि, चपटा कृमि होते हैं ना, वर्म्स बोलते हैं वर्म्स उसको, वो प्राणियों के मांस में शरीर में हमेशा रहते हैं, वो कितना भी आप पकाएंगे तो वो उसका बीज है ना वो मरता नहीं है, और आपके शरीर में प्रवेश करते ही उसके कृमि बन जाते हैं। इसलिए सारे प्रकार के कृमि जो हैं वो मांसाहारी लोगों के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि मांस के साथ में वो शरीर में प्रवेश करते हैं। आपको लगता है हमने पकाया और डाइजेस्ट किया उसको, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक लास्ट को आपको मैं शॉकिंग बात क्या है, शॉकिंग बात, जो मांस खाते हैं ना उनके मन में एक फिक्स रहता है कि हमको फ्रेश मांस मिलना चाहिए, और फ्रेश मांस का लाल रंग होता है, जो अभी अभी काटा हुआ फ्रेश मांस वो लाल रंग का होता है, जो पुराना होता है उसका रंग बदले हो जाता है। तो सर्वण को क्या मिलेगी, देखो तो लाल रंग का है ना, लाल फ्रेश वो मांस लेके आना 2 किलो। दुकानदार भी बहुत, व्यापारी बहुत होशियार होता है, वो क्या करते हैं मालूम है क्या, जानवर को मारने के पहले उसके नस में एक दवा देते हैं, इसको कहते हैं रेड ऑक्साइड। यू मे नॉट नो दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेड ऑक्साइड उसके आईवी देते हैं, आईवी उसको, वो आईवी देने के बाद में उसके मांस में जितना प्रोटीन्स है उसके साथ उसका लाल रंग का कंपाउंड परमानेंटली फॉर्म हो जाता है। उसके बाद वो जानवर को काटते हैं, उसके बाद उसका मांस पैदा करते हैं, पैक करते हैं, कांच में रखते हैं। वो 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, फिर भी लाल का लाल ही रहता है वो, क्योंकि मारने के पहले उसको आईवी एक दवा दिया है रेड ऑक्साइड, इसके वजह से वो लाल ही रहता है। और साइंस ने प्रूव किया है कि वो रेड ऑक्साइड जो देते हैं आईवी, इट इज़ अ नोन कॉज ऑफ स्टमक कैंसर, 100% नोन कॉज ऑफ स्टमक कैंसर, जो लोगों को उल्लू बनाने के लिए, उनसे अधिक देर तक बचा हुआ मांस भी खरीदने के लिए प्रवृत्त करने के लिए वो उनको मारने के पहले देते हैं। मारने के बाद नहीं, जो आदमी बकरियों को बढ़ा रहा है ना, वो चरा रहा है उसको, खेत में चरा रहा है, वही देता है उसको मारने के पहले। कसाई को बेचने के पहले वो इंजेक्शन मार के देते हैं उसको, और क्या बोलते हैं, अरे बकरी आ रही है तो अच्छा बकरी लेके आओ, तगड़ा, एक बकरी में 100 आदमी का खाना होना चाहिए। तो बकरी बेचने वाला क्या करता है, बकरी को इंजेक्शन लगाता है स्टीरॉयड का, हाँ, ताकि बकरी ऐसा मस्त लेके दिखे, मज़ा आ जाए देखिए इसको। फिर बकरी लोगों को भी इन्फेक्शन होता है कभी कभी, तो उनको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको हैवी एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दे देते हैं। बकरी लोगों को काटने के पहले छोटी जगह में बहुत सारी बकरियों को जैम कर देते हो, बड़ा हॉल अवेलेबल नहीं है क्या उनके लिए, छोटा कमरे में 100 बकरी को बंद कर देते हैं, कल उनको लेके जाना काटने के लिए, क्या उनको करना है, नखरे करने उनके लिए, कुछ नहीं करना है। लेकिन 100 बकरी जब छोटे कमरे में एकत्र होते ना तो वो पागल हो जाते हैं, उनको जगह नहीं हिलने के लिए। आपको समझो अभी इतना अच्छा अच्छा कुर्सी बैठने को दिया, समझो आपको एक जैम कर दिया एक जगह पे, सबको हाथ हिलाने का जगह नहीं दिया, ऐसा इतना खड़ा रहने का, हिलने का भी नहीं, 100 फीट के अंदर आपको 100 आदमी को खड़ा रहना है, तो आप क्या खुश हो जाएंगे, वाह कितनी कम जगह मिले, कितनी खुशी की बात है, ऐसा बोलेंगे आप। आप बोलेंगे क्या जगह है ये, कोई कोई जेल में ऐसा जेल होता है खाली बैठने की जगह होती, खाली बस 4 फीट बाय 4 फीट बाय 4 फीट इन द क्यूबिकल आपको बैठना है, ये आपकी सजा है। उधर पैर भी स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, हाथ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही बैठना है आपको। अभी अच्छा लग रहा है आपको, बहुत देर चल के खड़े हो गए तो अच्छा लगेगा आपको, लेकिन आपको बोलेंगे कि ऐसा ही बैठना है आपको, हाथ भी हिलाना नहीं, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, तो आप परेशान हो जाएंगे ना, आपको मूवमेंट ही दे दिया है। वैसा उन बकरियों को जब छोटी जगह पर ढाल देते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो उस जगह पर एक दूसरे पर हमला करते हैं अपने पर ही दिमाग खराब होने के बाद, तो वो वैसा नहीं करना चाहिए, इसलिए उनको एक और सुई देते हैं। व्हाट इज दैट इंजेक्शन, डिप्रेसेंट, शांत कर देते हैं, मसल रिलैक्सेंट दे देते हैं उनको, ऐसे 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 पड़े रहते हैं, मूवमेंट नहीं, एक्शन नहीं, कुछ नहीं। वो सारे एंटीबायोटिक्स, सारे स्टीरॉइड्स और सारी साइकेट्री की दवाएँ आपके शरीर में मांस के साथ प्रवेश करती हैं। एग्री विथ मी और नॉट? ऐसा नहीं होता है कि उसका सारा वेनस खाली करो, उसका वेन्स खाली करो, आर्टरी खाली करो और फिर बेचो, ऐसा नहीं होता है। एज इट इज़ उसको बेचते हैं आपको, दवाइयों के साथ, दवाई ऑलरेडी लगा दिया है उसको, रेड ऑक्साइड भी दे दिया है उसको, और वो सारा चीज़ हमारे शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए बीमारी फैलती है, इसलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना हैवी एंटीबायोटिक दिया हुआ मांस आपने खाया है आपके शरीर में, उसको बिना रीज़न के प्रवेश किया उस एंटीबायोटिक ने। तो जब आपको खांसी होती है तो सिंपल एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी हैवी एंटीबायोटिक आपने बिना मतलब के खा के रखी हुई है, टू क्रिएट रेजिस्टेंस। ये टेक्निकल बातें हैं बहुत सारी है। और मांस में क्या होता है, हाई लेवल प्रोटीन्स, हाई लेवल फैट, स्टीरॉइड्स, हॉर्मोन्स, सब कुछ होता है। हष्ट पुष्ट करने के लिए उनको हार्मोन भी देते हैं, हार्मोन ग्रोथ हार्मोन देते हैं ताकि वो बड़ा दिखना चाहिए, बेचने के टाइम पे इतना मास होना चाहिए उसके ऊपर। और ये सारा हार्मोनल ड्रग्स एंटीबायोटिक्स स्टीरोइड्स सब आपको खाना पड़ता है। ओके, ये मैंने बताया आपको, सब कुछ बता दिया, रेड ऑक्साइड रिलैक्सेंट एंग्जायटिक्स बोलते हैं उसको, एंग्जाइटी कम करने के लिए दवा देते हैं, शांत करने के लिए, दिमाग सोचना ही बंद कर देता है। जानवर का 100-100, 15-15, 20-20, 50-50 जानवर को आप जमा करो कुछ नहीं करेंगे वो। नेक्स्ट, बाद में क्या होता है, आप खाली मांस खाते हैं, हाँ चमड़ी जो है लेदर इंडस्ट्री को बेचते हैं वो लोग, उससे आपका पर्स, आपका क्या कहते हैं उसको, बेल्ट, जूता, ये सब बन जाता है, क्लिप्स बन जाते हैं आपके सारे। आपको पता होना चाहिए जब आप लेदर का बेल्ट पहनते हो तो उसके लिए किस जानवर को मारा गया है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। जब कोई लेडीज़ अच्छा सॉफ्ट लेदर का पर्स पहनते हैं, हाँ अरे ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये फॉरेन का इम्पोर्ट है, बहुत सॉफ्ट लेदर का है ये, याद रखना उसके लिए किसी जानवर को मारा गया है, किसी जीव ने अपना प्राण दे दिया है आपका पर्स बनने के लिए, याद रखना उस बात का, क्योंकि वो चमड़ी वहाँ बेचकर उसका इस्तेमाल करते हैं। हड्डी जो है ना उसकी टूथपेस्ट बनती है, क्योंकि टूथपेस्ट में होता है कैल्शियम, होता है ना कैल्शियम, दांतों के लिए अच्छा होता है वो। वो कहाँ से मिलेगा टूथपेस्ट वालों को, जहाँ पर होता है कत्तल खाना वहाँ मांस निकालने के बाद में चमड़ी बचती है, हड्डियाँ बचती है, बहुत सारी चीज़ बचती है, वो सब ये उनको सबको बेच देते हैं। वो हड्डियों को पाउडर करके कैल्शियम का सोर्स बनता है। आप बोलते हो मैं पक्का शाकाहारी हूँ, सुबह उठ के लगाते हो कोलगेट, सबसे पहले होम बोन की पाउडर मुँह में लेते हो आप, सबसे पहले मॉर्निंग में आपको लगता है कि आप शाकाहारी हो, शाकाहारी नहीं हो आप, क्योंकि सबसे पहला टूथपेस्ट जो आप यूज़ करते हो उसमें बोन पाउडर रहती है। तो आप पूछेंगे आप लोग क्या करते हो फिर, कुछ कुछ टूथपेस्ट ऐसी होती है जो बोन पाउडर से नहीं बनती है, जैसे कि प्रॉमिस, विको वज्रदंती, हाँ और बबूल, ऐसे 4-5 है हम लोग वापरते हैं। हाँ तो कारण क्या है इसका कि ये टूथपेस्ट का सोर्स जो है वो हड्डी है। अच्छा, फैट, चमड़ी के नीचे हर आदमी के शरीर के अंदर फैट होता है, फैट उसको बोलते हैं चर्बी, वो चर्बी को पिघला कर उसका तेल बनाते हैं और वो तेल झोपड़पट्टी वालों को बेचते हैं, जिससे नान कटाई टोस्ट बटर बनता है जो रोड पे बिना पैकिंग का मिलता है। इसलिए हम लोग रोड का नान खटाई बिस्किट खारी कुछ भी नहीं खाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि सस्ते वाला मिलने वाला तेल है ना, चमड़ी को पिघला कर बनाया हुआ, चमड़ी को फिर बेच देते हैं, चर्बी को पिघला कर तेल बनाते हैं और उसका वो रोड साइड बिस्किट बनाते हैं, उसका जो होटल के अंदर बिस्किट में होता है ना, बॉटल में रहता है ना, वो सब वो ऐसा रहता सब। और बड़ी बड़ी संस्था के अंदर भी ये सस्ता तेल वापरते हैं, क्योंकि वो कच्चा माल बहुत सस्ता मिलता है उनको, खाली जाने कत्तल खाने में खरीदने का, होल सेल में खरीदने का उसका। फिर क्या होता है, साबुन की इंडस्ट्री में भी ये फैट लगता है, शैम्पू साबुन लक्स जय हमाम ये सबको बनाने के लिए वो चर्बी इस्तेमाल करते हैं जो प्राणियों को मारने के बाद। तो आप बोलेंगे आप साबुन कैसा फिर बनाते हैं, आप क्या करते हो, हम लोग बिना चर्बी का साबुन यूज़ करते हैं, हमारे मंदिर में भी साबुन बनता है खुद का जो चर्बी से नहीं बनता है, उसको कहते हैं वेजिटेरियन सोप। बाजार में मिलने वाला सोप जो है वो नॉन वेज होता है, यू शुड नो दिस। बाद में क्या लिखा है, बचा हुआ जो माल है वो सब जला देते हैं, उसको लिए उसके लिए पेट्रोलियम पेट्रोल डीजल जला के जला देते हैं, वो पर्यावरण में वो करता है उत्पन्न पोल्यूशन, उसको बोलते हैं प्रदूषण, वो उत्पन्न करता है। एक मांसाहार करने के लिए देखो कितना कष्ट हो रहा है, कितना तकलीफ हो रही है। हाँ अभी आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा समय देंगे उसके लिए। अच्छा आप बोलेंगे अंडा क्यों नहीं खाना है, अंडे में क्या खराबी है, अंडे कितने प्रकार के होते हैं बताओ, जानते हैं क्या आप लोग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं अंडे, एक होता है जिसमें बच्चा है, एक होता है उसमें बच्चा नहीं है, अनफर्टिलाइज्ड एंड फर्टिलाइज्ड। एक में मुर्गा मुर्गी का संबंध हो गया है और उसके अंदर बच्चा है, उसको मुर्गी गर्म कर रही है, 21 दिन के बाद बच्चा देगी। और एक वो होता है जिसको संबंध नहीं हुआ है लेकिन अंडा निकला हुआ है, उसके अंदर बालक नहीं है, वो बालक बनेगा भी नहीं उसके अंदर, क्योंकि संबंध नहीं हुआ उसका। दोनों प्रकार के अंडे खराब क्यों हैं, अच्छा एक एक में तो बालक है तो उसको मारना नहीं चाहिए, आप बोल रहे हैं चलो आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, आप बहुत दया के भागीदार हो। एक में बच्चा है उसको तो खाना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें जीव है, उसको मारना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरा जो है ना, क्या बताऊँ आपको, मुझे बताने को शर्म आ रही है। जैसे स्त्री को होता है ना मासिक धर्म होता है ना, तो हम लोग कितना उसको अशुद्ध मानते हैं। वो जो अंडा है वो मुर्गी का मासिक धर्म है। जब बच्चा नहीं होता है तो मतलब क्या, जब पुरुष स्त्री का संबंध नहीं होता है तो गर्भ में गर्भ स्थापित नहीं होता है, फिर खून के रूप में वो सब बाहर निकल जाता है। तो अगली बार फिर जो संबंध होता है तो बच्चा होने की संभावना है। तो जब मुर्गा मुर्गे का संबंध नहीं होता है तब वो जो अंडा निकलता है वो मुर्गी का मासिक धर्म है, तो वो कैसे हम खा सकते हैं, दोनों भी नहीं खा सकते, इसलिए अंडा हम नहीं खाते हैं। ठीक है, अभी हम मन के, अभी देखो इसमें ये बड़ा बहुत बड़ा विषय है, मैं इस पर 8 घंटा बोल सकता हूँ एक एक विषय के ऊपर, लेकिन वो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। मन के ऊपर उसका क्या प्रभाव होता है, ऐसे कहते हैं कि जैसा रहेगा अन्न वैसा बनेगा मन। यू आर वॉट यू ईट, जो आप खाते हो वैसा बनते हो। ऐसा बोलते हैं कि आप क्या क्या खाते हो हमको बताओ, आप क्या है हम बताएंगे आपको। मनुष्य के आहार के ऊपर उसकी स्वभाव, उसकी भावना, उसके बर्ताव, उसका कार्य हम बता सकते हैं, उसको वो कैसा बर्ताव करेगा ये हम बोल सकते हैं उसके खाने के ऊपर से। समझो आपने बहुत बड़ा यहाँ पर खाना लगा के रखा है, नॉन वेज है, वेजिटेरियन है, इधर कुछ बोम्बिल भी है, इधर बहुत सारा आइटम लगा के रखा है, वेजिटेरियन भी है, सलाड भी है, सब कुछ लगा के रखा है। तो आदमी जब उसको बोलेगा चलो चालू करो, तो आदमी कहाँ जाएगा उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि उसका स्वभाव कैसे रहेगा, कौन से काउंटर में फर्स्ट जाएगा, वी कैन टेल यू व्हाट इज हिज स्वभाव। आपके घर में अगर मैं एक बड़ा हाथी लेके आता हूँ, हाथी वाले के साथ हाथी लेके आपके दरवाजे पे आता हूँ, आप डरेंगे क्या, आप डरेंगे? उल्टा आपके बच्चा, आपका छोटे भाई का नाम क्या है,
नहीं
छोटे बहन का नाम, छोटे बहन भी नहीं एक ही है, आप सिंगल, हरे कृष्णा हरि बोल। आपका छोटा भाई है, व्हाट इज हिज नेम, हिज नेम इज हरे कृष्णा, अरे वाह वेरी सो नाइस, बड़े भाग्य की बात है। हाँ भाई को पुकारने के लिए हरे कृष्णा ही बोलेंगे, कितना भाग्य है, कितना भाग्य है, परम भाग्य है। तो हरे कृष्णा अगर समझो 5 साल का है हाँ, और आपके घर में मैं हाथी को लेके आता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा कम हियर, टेक दी 4 बनानास, गिव द एलिफेंट, जाके आप एलिफेंट को सोंड में देंगे, एलिफेंट पूरा ऐसा करके मालिक को दे देगा उसको। लेकिन समझो मैं आपके घर में शेर को लेके आता हूँ, बोलेंगे हरे कृष्णा कम हियर, टेक दिस बनाना, गिव दिस शेर बनाना, ऐसा बोलेंगे क्या आप, क्यों नहीं बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है, वो भी जानवर है, ये भी जानवर है। उल्टा शेर बहुत छोटा है, हाथी इतना बड़ा है, और हाथी से आप डरते नहीं हो, शेर से आप डरते हो, बताओ क्यों डरते हो, क्या फर्क है उसके अंदर, अरे ईटिंग में फर्क है उसके, ईटिंग में फर्क है। इतना बड़ा घोड़ा को अगर मैं घर पे आपके लेके आया, आप आराम से बच्चे को बोलो हाथ लगाओ, तुम भी हाथ लगाओगे, सब हाथ लगाएंगे उसको, लेकिन शेर को लगाएंगे तो दूर खड़े रहेंगे, दूर ऐसे मत लेके आओ बोलेंगे उसको। अरे आपको पता है मैं कहानी बोलता हूँ, कोई अच्छी कहानी है ना, आपको बहुत ज्ञान देगी वो कहानी। एक पिताजी था, एक बेटा था, दोनों गए रानी सा बाग भाईकाला में हाँ, प्राणी संग्रहालय में देखने गए। तो एक पिंजरे में एक शेर बैठा था, बहुत बड़ा शेर बैठा था, ऐसा आराम से बैठा था। तो ये पिताजी बोला देखो देखो शेर बैठा है, तो उसने बच्चे ने क्या हेट किया, उसको शेर ने कुछ नहीं किया। फिर बच्चा 2 कदम आगे गया, वहाँ से भी हेट किया, तो भी शेर ने कुछ नहीं किया। फिर वो एकदम पिंजरे के पास में गया, पिंजरे का डंडी हाथ में पकड़ा और हेट किया उसको, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। तो बच्चे का हिम्मत बढ़ गया, बच्चे ने क्या किया, एक पत्थर उठाया, पिंजरे के पास गया, उसका डंडा पकड़ा और दूसरे हाथ से पत्थर मारा उसको, फिर भी शेर ने कुछ नहीं किया। बोलो तो कितना हिम्मत बढ़ गया बच्चे का, उसने एक बड़ा पत्थर लिया और दोबारा लेफ्ट हैंड से डंडी पकड़ के राइट हैंड से अंदर हाथ डाल के ऐसा पत्थर मारा, मतलब कैसा, वो डंडी है ना डंडी, उसके अंदर हाथ डाल के फिर ऐसा पत्थर मारा उसका। जैसे ही उसने वो पत्थर मारा, शेर ने छलांग लगा के उसका हाथ ही पकड़ा और 2 मिनट में उसका हाथ खा डाला पूरा। इज अ ट्रू स्टोरी। अगर उस शेर की जगह पर गाय बैठी होती तो क्या होता बताओ, ऐसा होता नहीं होता, क्योंकि वो शेर कितना भी थका है, कितना भी बुढ़ा है, कितना भी ऐसा खाना पीना है खिला के उसको कमजोर बना के रखा है, फिर भी वो शेर है, भूलना नहीं, मांसाहार करने वाला शेर है वो, वो मांस ही खाता है। पिताजी की आंख बंद होने के पिछलने के पहले ही उसने पूरा बच्चे का हाथ खा डाला, यहां से अलग करके खा डाला उसको। फिर कहां गई उसकी हिम्मत? ये सब मैं क्यों बता रहा हूं कहानी आपको सब, क्योंकि खाने पे डिपेंड रहता है। हाँ, आपके घर में आप शेर को पालते हो क्या? हाथी को पाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शेर को पाल नहीं सकते हैं। वो कभी अपने बच्चे को खा जाएगा? वो आप गए काम पे, बच्चे को खा, एक बच्चा कम घर पे क्यों? शेर ने खा लिया, मेरे पालतू बच्चे शेर ने खा लिया उसको, उसका आहार ही वो है।
अभी 2 साल पहले नेशनल पार्क में एक आदमी ने कुछ दिनों को जा रहा था, उसका हाथ खींच के ले गया।
वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, वही तो कहानी बता रहा हूँ। हाँ, तो ये सच्ची कहानी है, रोज घटती है बोरीवली में, नेशनल पार्क में, विक्रोली में, पवई के पास से होता रहता है रोज का रोज। अगर आपके इलाके में खेलते खेलते कोई गाय आ गई तो आपको तो परेशान निकले, बिपटे आ गया तो, लेपर्ड आ गया तो सब हालत खराब होती, सब लोग घर से भाग जाते हैं। आहार के ऊपर प्राणी का स्वभाव बनता है, ध्यान रखना इस बात का। वैसे ही आपका है, आप शाकाहारी रहोगे आपका स्वभाव अलग बनेगा, और आप मांसाहारी बनोगे आपका स्वभाव बदलेगा। ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव, बहुत हेवी बातें हैं। ये कहने का इतना मतलब यही है मुझे, इस स्लाइड से मुझे बताना आपको ये है कि हिंसा से बने हुआ खाना आप खाएंगे तो आपके अंदर भी हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ेगी। हिंसा ब्रीड्स हिंसा, वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस, वायलेंस द्वारा मांस बनता है, वायलेंस के बिना मांस नहीं बनता है, और वायलेंस से बना हुआ जो फल है मांस, उसको आप खाते हो, आपके अंदर भी हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। एक कसाई था, कसाई वो किसी का भाई था, तो भाई उसको ना कत्तल खाने में ऑन ड्यूटी मिलने गया। उसकी ड्यूटी क्या है? काटना जानवर को, वो कुट, उसके हाथ में तलवार या चाकू या कुकरी ऐसा बड़ा बड़ा कुछ होता है, उससे वो खाट 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 काटते रहता दिन भर। तो वहाँ पर उसको भाई उसको मिलने गया ऑन ड्यूटी, और वो ऑन ड्यूटी उसका कुछ वाद विवाद था, उसका कुछ झगड़ा था, तो वो झगड़ा उधर बोलने लगे ऐसा वैसा, तो गर्मा गर्मी होती रही, वो कुछ बोला ये कुछ बोला, और साथ साथ में वो इधर से अपना काम ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि वो ड्यूटी पर है ना, ऑन ड्यूटी। बीच में झगड़ा उसका इतना बढ़ गया तो खाच 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 करके बीच में से भाई को मार दिया उसने, क्योंकि जो उसको दिन भर करने की आदत है ना, उसने इस दिशा के बदले में इस दिशा में चलाया, क्योंकि वहीं पर ऑन ड्यूटी झगड़ा हो रहा है ना उनका, क्योंकि वो खाता भी मांस है और काटता भी मांस को ही है रोज। तो उसको यहाँ से जानवर की गर्दन काटी और यहाँ से भाई की काटी, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, प्रवृत्ति का स्वभाव मामला ही है। टेंडेंसी एटीट्यूड चेंजेस व्हेन यू आर क्लोज टू फ्लैश एवरी टाइम। मांस का ना ही स्वभाव होता है, मांस का गुण क्या होता है? मांस अज्ञान में होता है, अंधकार में होता है। अपना शरीर है ना, शरीर इस शरीर में आप हो और आपका शरीर है, आपका गुण क्या है? सच्चिदानंद है। मांस का गुण क्या है? वो मरने वाला है ना, आप अमर हो, शरीर क्या है? मरने वाला है। आप ज्ञान पूर्ण हो, शरीर क्या है? अज्ञान से भरा हुआ है, आपकी इंद्रियां अपूर्ण है, पता है ना आपको, नहीं आंखों से आपको अलग दिखाई पड़ रहा है, कान से कम सुनाई पड़ रहा है, आंखों से चश्मा लगना पड़ रहा है, इंद्रियां आपकी अपूर्ण है, और शरीर आपको हमेशा दुखी देता है, सुख नहीं देता है कभी भी, सुख देता है थोड़ा बहुत, बहुत सारे दुख के साथ में थोड़ा सुख मिलता है। आपके पैर की छोटी उंगली को, लास्ट उंगली को समझे आपने ठंडा कुछ लगा दिया तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको उसको सुई लगा दिया तो दर्द कितना होगा और खुशी कितनी मिलेगी? जितनी खुशी आपको ठंडा लगाने से मिली उससे कई गुना दुख आपको सुई लगाने से हुआ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट द बॉडी कैन गिव यू मोर पेन देन प्लेजर। जितनी बॉडी आपको खुशी दे सकती है उससे कई गुना अधिक आपको दुख दे सकती है वो। ये हुआ मांस का गुण, जो आप सबका शरीर में मांस है ना, ये मांस का गुण है। ये मांस जब आप खाते हो ना तो आपके अंदर भी अज्ञान दुख आना चालू हो जाता है अपने आप ही स्वभाव के अनुसार। नेक्स्ट, इमोशनल। जब आप किसी प्राणी को खाने के लिए मारते हो तो प्राणी को भी उतना ही दुख होता है जितना इंसान को मरते हुए होता है। सेम पेन इज देयर। उसको भी अपने जीवन से प्रेम है, उसको भी अपने बालकों से प्रेम है, उसको भी गुस्सा आता है, उसको भी डर लगता है, वो भी हिंसा से डरता है। अगर अचानक बात करते करते मैंने पिस्तौल निकाले और लाम अचाने मार दूंगा आपको, तो आप आराम से बैठ सकते हो क्या? मारो गोली, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक है, ऐसा बोलेंगे क्या? तुरंत आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, पसीना आएगा, डरोगे, सर मत मारो मुझे, सर मत मारो, है ना। वैसे ही जब जानवर को आप मारने को जाओगे तो ऐसा आराम से बैठेगा नहीं, वो अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। कभी कत्लखाने में जाओ आप, देखो जो जानवर को मारते हैं तो जानवर कितना कोशिश करता है भागने की, उसके हाथ पैर मुंह सब बांध के लटका के उसको मारते हैं, फिर भी उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं डर के मारे, क्योंकि उसको भी भावना है, उसको भी कुछ जीवन के लिए प्रेम है, उसको भी भावना होती है। और जब आदमी डरता है तो उसके शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स, हॉर्मोन्स, स्टीरॉयड जमा होते कि नहीं होते, उसकी वजह से उसका बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, उसका पसीना आता है, उसको डर लगता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, आंखों से डर के बारे अश्रु बहते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे केमिकल उसके शरीर में पैदा होते हैं डर के मारे। और जब जानवर ऐसी भयंकर स्थिति में, डर के स्थिति में मरता है ना, तो सारे केमिकल्स उसके शरीर में रहते हैं, उसके मांस में रहते हैं, जो उस मांस के साथ में आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए मांसाहारी व्यक्ति बहुत टेंशन में रहता है, बहुत चिंतित रहता है, बहुत एंग्जाइटी रहती है उसके अंदर, और गुस्सा जल्दी उसको आता है, एजिटेशन, इज़ वेरी एंगर ओरिएंटेड, वो जल्दी गुस्सा आता है उसको, गर्म होता है उसका दिमाग। उसका शाकाहारी आदमी का दिमाग शांत रहता है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि शाकाहारी आदमी को गुस्सा नहीं आता है, दोनों को गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से गुस्से में अंतर है बहुत। हाँ, एक आदमी खून कर सकता है, एक आदमी क्रोध करके दो बातें बोल के छोड़ देता है, ये डिफरेंस है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, समाज के कारण क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं प्रभु जी, हम अगर जानवर को खाना बंद करेंगे तो उनकी संख्या बढ़ेगी ना, इतनी संख्या बढ़ेगी तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? कितनी चिंता है हमको समाज की, देखो समाज की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, कितनी चिंता है हमको, इसलिए हम लोग मांस खाते हैं। अरे ऐसा नहीं है, जितनी जाति भगवान ने बनाई ना, उसका बैलेंस भी भगवान ही करते हैं। समाज में पूरा बैलेंस है, जितनी जातियाँ हैं, कितने कुत्ते हैं, कितनी बिल्ली है, कितने शेर है, सबका बैलेंस भगवान ने बना के रखा है प्रकृति के द्वारा। हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप शाकाहारी बने रहो, भगवान अपना काम करेंगे, डोंट वरी। भगवान का काम और प्रकृति का काम खुद पर मत लो, खुद का काम अच्छी तरह से करो, बस मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है। हा? उससे क्या होती है, समाज में क्रूरता बढ़ जाती है, समाज में क्रूरता बढ़ती है, दूसरों के जीवन के प्रति आदर नष्ट होता है। जो आदमी मांस खाता है वो कभी भी दूसरों के जीवन के प्रति आदर नहीं करता है, क्योंकि उसको जीवन को मारने के बाद ही जो मांस बनता है वही खाता है ना वो, तो उसके जीवन के प्रति आदर कैसे होगा उसके मन में, नहीं हो सकता है। फिर लोग बोलते हैं कि हम पक्षी प्रेमी हैं, हम श्वान प्रेमी हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट में और डिनर में मांस खाते हैं, बोलते हैं हम पक्षी पर बहुत प्रेम करते हैं। अरे पक्षी और जानवर में क्या अंतर है बताओ? वो आत्मा पक्षी के शरीर में है, ये आत्मा जानवर के शरीर में है, वो आत्मा बकरी के शरीर में है, तो थोड़ी ऐसा है कि वो आत्मा क्योंकि बकरी के शरीर में उसके खा सकते हैं और पक्षी के शरीर में है रंगी बिरंगी उसको नहीं खा सकते हैं, वो बुरा पाप है, ऐसा होता है क्या? जो आदमी भगवान पर प्रेम करता है, सब जीव पर प्रेम करता है, वो हर जीव में समानता देखता है कि ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, और ये भी आत्मा है, और वो भी आत्मा है। खाली शरीर जो है वो पक्षी का है या पंछी का है या आदमी का है, इतना ही फर्क है, लेकिन हर जीव सच्चिदानंद ही होता है। प्लीज़ याद रखना इस बात को। हाँ, चलने वाला हिलने वाला हर जीव जो है वो सच्चिदानंद है, वही भगवान का अंश है। जितने आप भगवान के अंश हैं उतना वही भगवान का अंश है, कोई अंतर नहीं है सर। आप मनुष्य होने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनते, हमारी महानता मनुष्य होने में नहीं है, हमारी महानता सब जीव को समान देखने में है। अगर सब जीव को समान देखने में आप लोग कुशल हैं तो आप लोग महान हैं। अगर घर में बहुत कुत्ते को प्रेम करते हैं, अरे तो खाना खिलाते हैं, दवा खिलाते हैं, उसको टीका लगाते हैं, उसको इंजेक्शन लगाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, प्रेम से घुमाने ले जाते हैं, उसका टट्टी निकाल के जेब में रखते हैं और घर में आके डालते हैं डस्टबिन के अंदर, इतना प्रेम करते हैं, लेकिन लंच में बकरी का मांस खाते हैं, तो उस कुत्ते पर प्रेम करने का लाभ क्या है बताओ? खाली कुत्ते पर प्रेम करते हैं, बाकी सब जीव पर मांस खा सकते हैं, ये कहाँ का दया और करुणा हो गई? दिस इज ऑल नॉनसेंस, है ना। इसका आगे क्या, जो आदमी मांस खाता है वो जरूर ही शराब पीता है। इज दैट टुगेदर ऑलवेज? हाँ, मांस खाना और शराब पीना हमेशा हाथों हाथ साथ में चलता है। रेयरली यू विल फाइंड कि जो मांस खाता है वो शराब नहीं पीता है, और रेयरली यू विल फाइंड जो शराब पीता है वो मांस नहीं खाता है। फिर जो शराब पीता है और मांस खाता है, फिर वो वेश्या के पास भी जाता है कभी कभी घूमने के लिए, और कभी कभी ये सब करने के लिए चाहिए पैसा उसको, तो वो जुआ भी खेल लेता है बीच बीच में कभी। ये कैसा ना है, घसरगुंडी है ये, कि शुरू होती है मांसाहार से, फिर घिसरते घिसरते पहुंचती है वेश्या व्यवसाय से, जुगाड़ तक पहुंच जाती है। ये चारों पाप जो है ना, वो मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, नशा करना, ये एक से एक हाथ में मिलाए हुए पाप है। ये एक का पकड़ लिया तो चारों आपको पकड़ लेते हैं, आप उस पर छूट नहीं सकते हैं। भाई बहुत टेंशन आया तो आप फिर कुछ ड्रग ले लेंगे, कुछ नशा पी लेंगे, दारू पी लेंगे, उसको बहुत टेंशन आया तो जुआ खेलने को जाएंगे, रेस खेलेंगे जाके, मन बहुत दुखी हो गया है, आज हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए ऐसे, तो गलत काम ही करेगा वो, क्योंकि उसका आहार जो है वही गलत है। नेक्स्ट, सस्ता कौन सा है भाई साहब, उसके लिए मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। यस, शाकाहार सस्ता है कि मांसाहार सस्ता है? सिंपल, मांसाहारी व्यक्ति भी ना बहुत धनी होगा तो रोज खाएगा, लेकिन जो मीडियम क्लास का आदमी है वो हफ्ते में एक बार मांसाहार खाता है, रविवार को छुट्टी के दिन, और छः दिन भाजीपाला खाता है। क्यों? क्योंकि महंगा होता है वो, परवड़ता नहीं है, फिर पैसा इकट्ठा करके हफ्ते में एक बार खाता है। सबको पता है महंगा है वो, शाकाहार सस्ता होता है, हजम करने के लिए आसान होता है, और दिल भी उससे अच्छा बनता है। हाँ, नेक्स्ट, अभी नीति के हिसाब से देखा जाए, आपको इस बात में सोचना है। हाँ, एक काम करेंगे आप लोग, सब लोग खड़े हो जाइए एक मिनट के लिए, सब लोग खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, दोनों हाथ ऊपर के लंबा सांस लीजिए, जोरदार एकदम लंबा लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, फिर लीजिए और फिर छोड़ दीजिए, फिर लीजिए और फिर छोड़ दीजिए, और पैर से ऐसे ऊपर ऊपर कीजिए, ऐसे करिए। अभी बैठ जाइए, ये कोई इंपॉर्टेंट बात समझाने के लिए मैंने ये आपका एक्सरसाइज करवाया आपको। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि समझो, अभी आपके घर में कितने भाई बहन हैं?
चार बहन, लेकिन सब बहन।
चार बहन हैं आपके, आप पांचवी हैं क्या? सो फोर में आप चार इंक्लूड है ना, तो कोई बड़ी हो गई, कोई छोटी हो गई, है ना? जब आप छोटे डब्बे से बड़े हो गए, आप शादी हो गई सबकी, लेकिन बचपन में समझो लास्ट बहन एक साल की है, फिर तीन साल की है, फिर सात साल की है, फिर ग्यारह साल की है, है ना? और मैं आपके घर में, सॉरी हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुरा मत मानना। तो मैं आपके मेरे घर में मेरे बर्थडे को आता हूँ, मैं कहता हूँ आज मेरा बर्थडे है, मुझे पार्टी करनी है, आपकी छोटी बेबी है ना, मुझे चाहिए, मैं सबको पार्टी कराऊँगा आज, तो आप क्या करेंगे? आप मेरा बड़ा आदर करते हैं, मुझे हैप्पी बर्थडे कहने का भी दिल है आपको, उसलिए आपने मुझे घर में बुलाया है, और घर में आके बोलता हूँ कि आपकी एक साल की छोटी बेबी है ना, वो चब्बी है, बहुत सॉफ्ट है, मैं उसका सबको पार्टी कराऊँगा, आप दे दीजिए मुझे उसको, तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे सर आप कितने महान हो, कितने महान विचार है आपके सर, आपका चरण मैं छू लेता हूँ, हैप्पी बर्थडे सर। और जब हम बकरी को खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? 10-15 बकरे रखे हैं, बोलते ये नहीं ये नहीं, ये दो, ये मोटी वाली अच्छी है, बहुत शरम सॉफ्ट सॉफ्ट है, इसको दे दो, ऐसे करते हैं लोग ना। और हमारे बारे में ऐसा अगर करेंगे तो कितना दुख होगा हमको, लेकिन हम लोग मांसाहारी खाते वक्त वही करते हैं। मुर्गी की दुकान में जाते हैं, बोलते हैं अच्छी मुर्गी दिखाओ, अच्छी तगड़ी होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास, उसका मांस में बहुत स्वाद आना चाहिए। अरे वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, किसका वो भी किसका माता पिता उसके अंदर है। जब गाय का बछड़ा खोता है ना, तो आपने गाय को रोते हुए देखा है कभी? बहुत रोती है गाय, क्योंकि उसको प्रेम होता है अपने बालक के प्रति, वो भी एक माँ है, उसका भी बछड़ा है, उसके भी माँ है, माता पिता का रिश्ता होता है गाय के बीच में, बकरी के बीच में। अरे मुर्गी होती है ना, मुर्गी उसके 6 बच्चे होते हैं, वो सब भागते रहते हैं उसके पीछे, एक भी गायब होता है ढूंढे ना मुर्गी उसको। कुत्ते के पिल्ले 6-6 होते हैं, 8-8 पिल्ले होते हैं, सब उसके पीछे पीछे भागते हैं, उसको दूध पीते रहते हैं। एक बच्चा गायब हो गया तो माता गुस्से से सब जगह ढूंढी रहती है उसको, ढूंढते ना, क्योंकि वात्सल्य है उसके अंदर, प्रेम होता है। हम समझते हैं कि हमारे लिए खाली भावना होती है। हाँ, मैंने मैडम को बोला आपके बहन को दे दो तो कितना गुस्सा आया मैडम को। हाँ, ये हमको ही खाली भावना है, उसको भी भावना है। अरे हमने देखा हुआ है परिवार के अंदर, जब घर के आदमी कोई मरता है ना, तो घर की गाय रोती है, उसको समझता है कि मालिक हमारा गुजर गया है। दे क्राई, दे डोंट ईट फॉर 2 डेज, क्योंकि वो बॉन्ड होता है प्रेम का। जितनी हमें भावना है, उतनी भावना जानवरों को भी होती है, माय डियर सर, कुत्ते बिल्ले को भी होती है। आप कितना बिल्ले को घर में पालो, उनको भी दुख और सुख का अनुभव मिलेगा, दूध हिलाएंगे, आपको चाटेंगे, बाहर गांव से आप आएंगे तो प्रेम करेंगे आपसे, सब भावनाएं उनको होती है। खाली शरीर खाली कुत्ते का होता है, खाली बोल नहीं सकते वो, जैसे हम बोलेंगे आई लव यू वैसा वो आई लव यू बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सब कुछ करते हैं जो हम लोग करते हैं प्रेम से। इज दैट राइट डॉक्टर, इज दैट राइट? भावना सब जीव में होती है, तो हमको किसी को मारने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे पास बहुत बुद्धि है, इसलिए हम आपको शूट कर सकते हैं और खा सकते हैं आप। इसमें कोई बड़प्पन नहीं है, हमारा महिमा ये इसमें कुछ नहीं है। अगर हमारे में दया है, करुणा है, प्रेम है, तो हम महान हैं। हम लोग मनुष्य है, बुद्धिमान है, इसलिए सबको काट के खा रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। इज दैट राइट? दूसरी बात, मनुष्य जो है उसको भगवान ने बहुत सहूलियत दिया है, बोलने की कला दी है, हाँ बुद्धि दिया है इतना बड़ा, कुछ डांस करने की कला दी है, हाँ कुछ भाषण करने की कला दी है, चित्रकला है, पेंटिंग है, रंगोली है, ये सब कंपटीशन हम कुत्तों के साथ खेल सकते क्या? रंगोली कंपटीशन ओनली फॉर डॉग्स नहीं हो सकता है, ओनली इंसान के लिए रंगोली कंपटीशन कर सकते हैं, क्योंकि वो कला जो है इंसान के बीच में है। इंसान ने विश्व को बदल दिया है, हरियाली रेगिस्तान में हरियाली बना दिया है, इतना बुद्धि भगवान ने इंसान को दिया है। तो भगवान क्या सोचते हैं कि ये मेरे बड़े बालक की तरह है। आपके घर में सबसे बड़ी बहन का नाम क्या है? अच्छा, वो जब पैदा हुई थी तो उनको माता पिता ने बहुत प्रेम दिया होगा, है ना? जब वो बड़े होकर सेकंड का आपका जन्म हुआ तो माता ने क्या बोला होगा? देखो, क्या नाम उसको बताया आपने?
चारुशीला।
देखो चारुशीला, तुम बड़ी हो ना, उसका देखभाल करो। आपका नाम क्या है?
संजना।
संजना का देखभाल करो, क्योंकि आप बड़े हो ना। तो जो बड़े होते हैं उनको पहले बहुत प्रेम मिलता है, उसके बाद में क्या होता है, उनसे बहुत उम्मीद भी करते हैं कि ये देखभाल करेंगे सबका, मैच्योर से मैच्योरली बिहेव करेंगे सबके साथ में। वैसे हम लोग है ना भगवान के बड़े बालक की तरह हैं, और सारे जानवर, पंछी, मछली, पेड़, जितने भी जानवर हैं वो सब हमारे छोटे बालक की तरह हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि आप बड़े बालक की तरह हो ना, सब छोटे बालकों की दया, करुणा, प्रेम, देखभाल करो। हम लोग क्या करते हैं, सबको काट के खाते हैं। एक पिता है जिसके बहुत सारे बालक हैं, और जो बड़ा बालक सबसे बुद्धिमान है उससे वो उम्मीद करता है कि वो छोटे बालकों की रक्षा करेगा, अपनी बुद्धि के साथ में उनकी देखभाल करेगा, संकट में उनकी रक्षा करेगा, उनको खिलाएगा पिलाएगा, उनको अच्छी तरह रखेगा। तो एक भगवान का बड़ा बालक होने के नाते हमारा यह फर्ज है कि सभी जीवों पर हम लोग करुणा करें, प्रेम करें उनके ऊपर, उनको जीने दें, उनका जीवन छीन न लें, क्योंकि हम लोग बुद्धिमान हैं। कितना बड़ा बैल है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि, इसलिए हम उसको काट के खा सकते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल इसके लिए नहीं दिया गया हमको, बुद्धि उसके लिए दी गई है, बुद्धि दी गई है भगवान को प्राप्त करने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड, नॉट टू कट एनिमल्स। और लास्ट एग्जाम्पल जो है ना वो मैं देना चाहता हूँ आपको। अभी आप लोग नर्स हो ना, दिन में कितनी सुई लगाते हो? यस सिस्टर, आप लगाते हो सुई? यू नॉट सपोज टू गिव इंजेक्शन? ओके, यू गिव इंजेक्शन? हाउ मेनी इंजेक्शन पर डे यू गिव? हाँ, कितना? 20-30 देते ना आप? कितना देते सिस्टर? आप तो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। और कोई है इंजेक्शन देने वाला यहाँ पर? आप देते हो? आप देते हो? दिन में कितना देते हो? डिपेंड, कितना देते हो? 20-25-30 आराम से सुई लगाते हैं। अभी एक दिन क्या होता है, हाँ, संजना को लगता है पतरा, वो हॉस्पिटल में आती है, कैजुअलिटी में उसका ड्रेसिंग होता है, फिर डॉक्टर बोलते हैं इंजेक्शन TT 0.5 cc इंट्रामस्कुलर। तो बाद में रियल थोड़ी आरंभ होती है, फिर संजना सबको फोन करेगी, सुचित्रा मैडम तुम्हें हाथ का है, बिंदु सिस्टर तुम्हें कुटे आए, क्यों क्या हो गया आज, क्या फोन कर रही है? नहीं, मेरे को सुई लेने का है। आपका हाथ सबसे हल्का है ना, आप मुझे आके देना। मिटभाव करने मुझे एक बार फ़ोन किया था कि सर आपका हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन ड्यू है अभी, सर आज मत देना, कल लेना। कल ना वो सिस्टर आने वाली है, वो बहुत अच्छा हल्का हाथ है उसका। अरे 0.5 cc इंजेक्शन के लिए इतना सोचने की जरूरत क्या है? लेकिन जब वो सुई मुझे लगाने का समय आता है ना, तो मैं कितना सोचता हूँ उसके बारे में, सिस्टर 26 नंबर लिया ना, 25 मत लेना, बहुत दुखता है। और आप बिंदास आराम, दिन में 25 से लगा देते हो, ऐसे ही क्या प्रॉब्लम नहीं है, खचाखच लगा देते हो, लेकिन खुद को लगाने का टाइम आएगा तो कितना सोचते हैं उसके बारे में। क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमको अपना शरीर पे दर्द पसंद नहीं है, इतना भी पसंद नहीं है, नहीं होता है सहन। आपको ऐसा नहीं बोल रहे, आपको 10 दिन रोज 0.5 cc टेटनस डॉक्टर लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल रहे हो, एक ही बार लेना है उसको। फिर भी इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, क्योंकि वो दर्द जो एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए होगा, वो भी हमको पसंद नहीं है। और वही हम लोग, जानवर को मारने में हमको कोई कष्ट नहीं, हमको एक सुई का तकलीफ सहन करने में इतना तकलीफ है, और जानवर को मृत्यु का दर्द देने में हमको कोई तकलीफ नहीं है ना। ये इंसान नहीं है, ये राक्षस है। इंसान वही है जो जितना दर्द खुद को होता है उससे 1000वां हिस्सा भी दर्द वो दूसरे को देना नहीं चाहता है, ये समझते हुए कि तकलीफ होती है। जिसको खुद को दर्द की अनुभव है ना, वो किसी को तकलीफ कभी देगा नहीं, क्योंकि वो जानता है बहुत कष्ट होता है। मुझे हो गया, मैं किसी और को नहीं दूंगा कष्ट, हो मेरे दुश्मन को भी वो कष्ट कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा वो अच्छा आदमी बोलता है। और बुरा आदमी क्या बोलता है, मुझे हुआ है ना मैं सबको कष्ट दूंगा, मुझे रैगिंग हुआ है ना कॉलेज में, नेक्स्ट बैच में सबको रैगिंग करूंगा मैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। और इंसान की प्रवृत्ति क्या है, रैगिंग मुझे हो गया ना, मैं तो उस समय तो गरीब था, रैगिंग कर लिया, लेकिन मैं किसी को रैगिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने रैगिंग में को कष्ट होता है उसका अनुभव मैंने किया है, इसलिए मैं कभी रैगिंग किसको नहीं करूंगा। ये इंसान का लक्षण है, दिस इज अ साइन ऑफ अ इंसान। ओके, तो ये है एथिकल, मतलब भावना के स्तर पर मांस खाना चाहिए क्या, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के बड़े बालक हैं, ज्येष्ठ बालक है भगवान के हम लोग। नेक्स्ट, ये नहीं दिखाएंगे आपको। मोहम्मद कुरान ने हदीस नाम का एक शास्त्र है कुरान के अंदर, एक सब स्क्रिप्चर है, उसके अंदर लिखा है कि अपने खुशियों के महल दूसरों के दुख पर मत बनाना, अपने यश और कीर्ति की मंजिल दूसरों के छाती पर पांव रख के मत हासिल करना। अगर हासिल करना ही है दूसरों को खुशी देकर हासिल करना, अगर मुमकिन है तो आपको खुशी मिल रही है, दूसरों के खुशी के साथ में खुशी हासिल करना, दूसरों को दुख देकर खुशी हासिल करने का प्रयास मत करना। लेकिन आम तौर पे आजकल के दुनिया में दूसरों को दुख दिए बिना कोई खुशी हासिल करता ही नहीं है। डॉक्टर क्या बोलता है, बारिश हो रही है, अच्छा मौसम है, क्यों, सब बीमार पड़ेंगे, अभी मेरे दवाखाने में भीड़ लगेगी, वो वेट कर रहा है कि आप बीमार पड़ो फिर हम पैसा बनाएंगे। बारिश हो रही है बहुत, सब जगह पानी जमा हो गया है, मैकेनिक खुश, क्यों, सबके टायर पंक्चर हो जाएंगे, अभी सबकी गाड़ियां बंद पड़ेंगी, शार्टर नहीं चलेंगे, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, सबका खुशी का कल्पना यही है। आपको कष्ट हो या ना हो मुझे परवाह नहीं है, मेरी खुशी मिलनी चाहिए बस। ऐसी प्रवृत्ति जब हम मांस खाते हैं तो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मांस खाने का बेसिस ही वही है, आपको कष्ट मेरी खुशी, आपका मृत्यु का दर्द मेरे को खाने की खुशी, 2 मिनट खाने के लिए मैं आपको मृत्यु का दर्द देने को तैयार हूँ। ये प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति है, ठीक है। नेक्स्ट, एनीवे बहुत ये कठिन काम है, ये भी कठिन काम है, छोटा सा आपको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। हाँ, खाना होता है ना वो 3 प्रकार का होता है, वो टाइम हो रहा है, मैं जल्दी फिनिश करूँगा। एक खाना होता है सत्वगुण में होता है, एक खाना रजोगुण में होता है, एक खाना तमोगुण में होता है। मांस वगैरह जो खाना है ना वो तमोगुण के अंदर आता है, मांस खाने से तमोगुण बढ़ता है, मसालेदार खाना खाने से रजोगुण बढ़ता है, मतलब दुनियादारी का अटैचमेंट बढ़ जाता है। आपको समझ में आ रहा है क्या, कि बहुत थक गए आप अभी, दुनियादारी में आपको पैसा कमाना है, नाम कमाना है, सुंदर बनना है, ये सब प्रवृत्ति जो है ना उसको कहते हैं रजोगुण। और उसका एक खाना है चटपटादार, हाँ, पानी पूरी, भेल पूरी, जो मसाले वाला, वो नाक से और कान से पानी आता है वो खाने के बाद होता है ना, भैया थोड़ा डालना मिर्ची अच्छी तरह से, पानी पूरी ऐसा झन होना चाहिए, कान से गर्म हवा निकलनी चाहिए तो फिर पानी पूरी खाने का खुशी मिलता है। ऐसा खाना खाने से दुनियादारी का अटैचमेंट बढ़ जाता है। और जो सड़ा हुआ खाना है, पुराना खाना है, फ्रिज में रखा हुआ है, बहुत दिन तक डीप फ्रिज में रखा हुआ है, 3 दिन के बाद में भी गर्म करके खा रहे हैं, ऐसे खाने को तमोगुणी खाना कहते हैं। और सत्वगुणी खाना वो है जो फ्रेश खाना है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, इससे बना हुआ है, ड्राई फ्रूट्स जो फ्रेश है, उससे मन में सत्वगुण उत्पन्न होता है। सत्वगुण से देवताओं के गुण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, रजोगुण से दुनियादारी बढ़ जाती है, दुनिया का अटैचमेंट बढ़ जाता है, और तमोगुण से हम सब लोग नरक की ओर प्रवेश करते हैं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थः, सत्वगुण में जो मर जाता है वो ऊपर के लोकों में यात्रा करता है। मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, तो रजोगुण का खाना खाते हैं दुनियादारी का, वो यहीं पर बार बार जन्म लेते हैं। और अधो गच्छन्ति तामसः, जो तमोगुण का आहार ग्रहण करते हैं मृत्यु के बाद में निचली ओर चले जाते हैं, नरक लोक की ओर। लॉज ऑफ कर्मा, कर्म का हिसाब क्या बोलता है, कर्म का हिसाब ये बोलता है, अभी देखो, अभी मैं जो भी बताने जा रहा हूं, आपको अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, सच लगे नहीं सच लगे, मुझे उसकी परवाह नहीं है, बताना मेरा फर्ज है। अच्छा लगे या अगर जच जाए मन को, अगर आप उसको एक्सेप्ट भी कर ले तो अच्छी बात है, नॉलेज देना मेरा काम है, अगर नॉलेज देने के बाद भी आपको नहीं समझता है आप करेंगे तो फल भोगने को तैयार रहो, बाद में बोलना नहीं कि हमने बताया नहीं था। सो लिसन केयरफुली, हाँ नियम क्या बताया है, जब आप किसी भी एक जीव का मांस खाते हो, समझो एक बकरी काटा तो 100 लोग ने खाते ना उसको, एक बकरी तो अकेला आदमी नहीं खा सकते, 100 लोग खाएंगे उसका मांस, आज के एक बकरी का पार्टी जो है 100 लोग ने किया, उन 100 लोगों को उस एक बकरी का शरीर का मांस खाने के लिए उस बकरी का जन्म लेना पड़ता है और कटना पड़ता है, जो कष्ट उस बकरी ने आपका नॉनवेज खाना बनने के लिए सहन किया है, मृत्यु का दर्द, वो आपको बकरी बन के कटना पड़ेगा, तो दर्द का फिटम फिट हो जाएगा। वैसे ही बकरी है, मुर्गी है, या और कोई सुअर है, या कोई और है, कुछ है जानवर का, जो भी मांस खाएंगे, एक आदमी एक जानवर का मांस खाएंगे तो एक बार दम देना पड़ेगा। एक नॉन वेज खाने वाला आदमी एक लाइफ में कितने जानवर का मांस खाता होगा, खाली गिनती करो आप, खाली गिनती करो। सुबह मटन मसाला खाया, शाम को चिकन मुगलाई खाया, हाँ रात को ऑमलेट खाया, ऐसे हो सकता है ना। संडे को तीनों बार खा सकते, नॉनवेज खा सकते हैं आप। एक पार्टी में गए तो उधर चिकन भी है, उसमें मटन भी है, उसमें बीफ भी है, उस सब कुछ रहता है उधर। तो एक मांसाहारी जो आदमी है वो एक जीवन में हजारों लाखों जानवरों का मांस खाता है, 100-100 ग्राम क्यों ना हो, उसको उतनी बार उतने जानवरों का जन्म लेना पड़ता है और फिर कटना पड़ता है, मृत्यु का दर्द सहना पड़ता है उतने कर्म को फिटम फाट करने के लिए। यह हिसाब हुआ गाय छोड़ के सभी जानवरों का। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सज्जनों, भाई और बहनों, गाय का नियम थोड़ा अलग है। जब आप गाय का मांस खाते हो, बीफ बोलते हैं उसको, इधर लिखा है बीफ, मछली का भी लिखा है, एक मछली खाएंगे तो एक मछली बनना पड़ेगा आप। कभी कभी हम एक साथ में 4-4 मछली खाते हैं क्योंकि तो छोटी होती ना, ये सब हमने किया है इसलिए आपको बता रहा हूँ। हाँ मैं आपके लिए बता नहीं रहा हूँ, जो हमने पहले किया है इसका भी आपको वर्णन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बीफ यानी कि गाय बैल का मांस का क्या क्या स्वभाव है, उसके शरीर पर जितने बाल है उतना नंबर में आपको एक जानवर का मांस खाने के लिए जन्म लेना पड़ता है। एक गाय के शरीर पर 5.5 स्क्वायर मीटर चमड़ी होती है और 1 स्क्वायर इंच चमड़ी के अंदर 2000 बाल होते हैं। अभी आप घर जाके उसकी गिनती करो कि एक गाय के शरीर पर कितने बाल होंगे। एक गाय का 100 ग्राम में मांस खाएंगे आप तो आपको इतने हजारों बार गाय बन के कटना होगा। आपको मिलेगा आधा घंटे का खुशी उस मांस खाने का और अनंत जन्मों तक आप उस कष्ट को भोगते रहेंगे। इतना भयंकर कर्म का नियम है इसके अंदर। हाँ डोंट टेक इट लाइटली, आप मांसाहार करके बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं जीवन में, कुछ समय के आनंद के लिए बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं, जन्म जन्म की कीमत चुका रहे हैं। शाकाहार करने से आपको कोई नुकसान नहीं है, आपका शरीर भी चलेगा, रोग से भी मुक्त रहेंगे आप, बीमारी, एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, सबसे मुक्त रहेंगे आप, एक स्वास्थ्यमय जीवन जिएंगे आप। लेकिन मांसाहार करने से शरीर के सर पर, मन के सर पर, समाज के सर पर और कर्म के सर पर भी अनंत कष्ट हैं। ये लोगों को पता नहीं होता है इसलिए वो खाते रहते हैं। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको हकीकत बता रहे हैं कि रियलिटी क्या है। यू शुड नो दिस, अगर आप बिलीव नहीं करते हो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कष्ट आपको ही भोगना है, मुझे नहीं भोगना है, मैं समझ चुका हूँ, मैंने छोड़ दिया उसको, जब समझ में आया तब मैंने तुरंत बंद कर दिया उसको। ठीक है, नेक्स्ट। आप बोलेंगे सर मैं तो पक्का शाकाहारी हूँ, मैं तो किसी जानवर को भी खाता नहीं हूँ। कोई कोई औरतें ऐसी होती है बोलते हैं मैं तो ना मारवाड़ी घर की हूँ, मेरे पति पंजाबी हैं, मैं उनके लिए बनाती हूँ लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। तो फ्री है क्या वो? फ्री नहीं है, ये सब लोग उसके भागीदार हैं। वो आदमी जो जानवर को खेत में चलाता है, उसको हष्ट पुष्ट करता है, उसको सुई लगाता है स्टेरॉयड की, हार्मोन की, इसकी उसकी, और उसको बेचता है, फिर एक आदमी उसको खरीदता है, एक आदमी खरीदता है फिर उसको खरीद के ट्रांसपोर्ट करता है, बॉम्बे में खरीदा तो उसको पुणे में लेके गया काटने के लिए, फिर पुणे में उसको दवा दिया काटने के पहले ना, मस्ती ना करे ज़्यादा, एजिटेट ना हो जाए, इसलिए उसको एंग्जायटिक दिया, उसको स्टेरॉयड दिया, सब कुछ दे दिया उसको, फिर उसके बाद में एक आदमी आया, उसने खाट 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 खाली काटने का काम करता है वो, उसके हाथ में बड़ा चाकू रहता है और लाइन से आते जानवर उसको खाट 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 खाली काटते रहते, बस वही। तो आप बोलेगा वो सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा पापी वही है वो काटता है, ये सब लोग काटने को सहायता करते हैं ना उसकी, वो उतने ही पापी है। उसके बाद में आगे वाला आदमी उसको प्रोसेसिंग करता है, उसको काटता है, उसको क्लीन करता है, चमड़ी अलग करता है, चर्बी अलग करता है, मांस अलग करता है, हड्डी अलग करता है, पैकिंग करता है उसको, फिर वो दुकान में बेचता है, दुकान में वो शोकेस में रखता है, फिर दुकान में दुकानदार उसको बेचता है और ख़रीदार उसको ख़रीदता है, और ख़रीदार घर लेके जाके उसको कुकिंग करता है और फिर हमारे टेबल पे वो आ जाता है एज अ चिकन मसाला प्लेट। ये सब लोग स्टार्ट से लेके एंड तक, उसमें एक्चुअली मारने वाला एक ही है जो चाकू से काटता है, लेकिन सब लोग उस पाप के इक्वल हकदार है, याद रखना इस बात का। डोंट थिंक कि जो खाली हष्ट पुष्ट बनाता है, दवाई देकर उनको भुगाता है, वो बिल्कुल अच्छा आदमी है, वो बिल्कुल अच्छा बुरा आदमी नहीं, ऐसा नहीं है। वो हष्ट पुष्ट क्यों कर रहा है, केवल बेच के कटवाने के लिए, उनको सुखी जीवन देने के लिए वो हष्ट पुष्ट नहीं कर रहा है, वो इतना खेत बेकार बर्बाद नहीं कर रहा है, वो उसको बेच के पैसा बनाना है जो आगे जाके कटेगा और मांस बनेगा उसका, ठीक है। और मांसाहार का परिणाम क्या है, सब लोग युद्ध कर रहे हैं, झगड़ झगड़ रहे हैं, अशांति, हाँ, बलात्कार, रेप, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग हजारों की संख्या में जानवरों को मार देते हैं और खाते हैं, ये भगवान का कत्ल खाना है। जो लोग ऐसे पाप करते हैं उनको भगवान युद्ध में लगाते हैं और वो एक दूसरे का वध कर देते हैं, एक साथ में हवाई जहाज डूबता है 500 लोग मर जाते हैं, एक बम फटता है 300 लोग इंजर हो जाते हैं, 200 लोग मर जाते हैं, एक बोट डूब जाता है 500 लोग जमीन में पानी के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, समझ में आपको आया, हमने कत्ल खाना बनवा के रखा है तो भगवान ने भी अपना कत्ल खाना बना के रखा है एज अ रिएक्शन, एज फल के रूप में। ये सब क्यों हो रहा है समाज में, क्योंकि अधिकतर लोग आजकल मांसाहारी हो रहे हैं, कॉमन हो गया है, नॉनवेज खाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके जग में सब जगह पर युद्ध हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान, चाइना इंडिया, चाइना पाकिस्तान, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, अमेरिका, इंग्लैंड, सब, इजराइल, ईरान, सब जगह युद्ध है, सब जगह झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि मांसाहार प्रधान है, दूसरों को दर्द देना खाने के लिए मेन है उनके लिए। ओके, फिर उसके बाद में इन्हें बहुत बड़ी बड़ी बातें बाद में करेंगे उसको। कारण क्या है उसका, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी बनते जा रहा है, उसको सहन नहीं हो रहा है, गुस्सा आता है, बहुत बहुत लोभी हो रहा है, वो द्वेष करता है, अपने आनंद के लिए कुछ भी कर सकता है, दूसरों का शोषण भी कर सकता है एनी टाइम। फिर रंग में भेद करता है, धर्म का भेद करता है, जाति का भेद करता है, भाषा का भेद करता है और उसमें झगड़े लगा देता है। तो हम बोलेंगे आप साउथ इंडियन हो, हम नॉर्थ महाराष्ट्रियन हैं, हम बेलगांव में रहने वाले हैं, हम मराठी बोलने वाले हैं, आप कन्नड़ी बोलने वाले हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आप काले हैं, हम गोरे हैं, हम अमेरिकन हैं, हम इंडियन हैं, हम मुसलमान हैं, तुम हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन हो, इतने सारे भेद क्यों करते हैं वो, क्योंकि वो शरीर के स्तर पर जीते हैं, इसलिए शरीर के अलावा स्तर पर भेदभाव भी करते रहते हैं। जो आत्मा के स्तर पर जीते हैं उनको पता है सब आत्मा समान है, सच्चिदानंद है, भगवान के पुत्र है, वो झगड़ा करने का कोई काम ही नहीं उसके अंदर। आप मेरे भाई हो क्योंकि आप भगवान के पुत्र हो, मैं भगवान का पुत्र हूँ, जब ये अंडरस्टैंडिंग आता है ना तो युद्ध करने का कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर ट्रेन में किसी ने पाँव रख दिया ना पाँव के ऊपर, तो भी झगड़े होते हैं, पाँव क्यों रखा तुमने, दिखता नहीं कि आपको, अरे भीड़ में गड़ में पाँव लग गया, माफ़ करना, ए पाँव रखा ही कैसे आपने, झगड़ा करने के लिए आपको कारण लगता नहीं है, क्योंकि क्या है उनमें खाने में इतनी अशुद्धि है, मन इतना टेंशन में है, इतना एजिटेटेड है, जरा सा कारण भी काफ़ी है मारामारी करने के लिए, ये उसका परिणाम है। अभी अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाते हम लोग, क्योंकि अनियन गार्लिक से सेक्स डिज़ायर बढ़ जाती है। आयुर्वेद में जब कोई आदमी नपुंसक होता है तो उसकी दवाई के रूप में लहसुन प्याज का इस्तेमाल करके दवाइयाँ बनाते हैं और उससे नपुंसकता का इलाज होता है। ओके, उड़द दाल, मसूर दाल ज़्यादा मात्रा में खाने पर भी यही परिणाम होता है। और जो भगवान के रास्ते पर है वो अपने सेक्स डिज़ायर को कम करना चाहते हैं, मांसाहार करने से सेक्स डिज़ायर बहुत बढ़ जाती है। समाज में रेप क्यों बढ़ रहे हैं, मैं सऊदी अरब में काम करता था, एक गली के अंदर सऊदी अरब के मुसलमान लड़के लोग इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के लड़के पर रेप करते थे, 10 स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड के लड़के, क्योंकि उनका आहार इतना तेज और उग्र है, उनको सहन नहीं होता है जवानी। फिर परदेश के गरीब औरतों को जो वहाँ पर लेबर बन के गए हैं उन पर रेप करते हैं लोग। आहार पर बहुत ज़्यादा निर्भर है ये सब चीज़ें। आहार से आदमी का स्वभाव बनता है, वो गुस्सा करेगा, वो क्रोधी बनेगा, क्रोध बनेगा, कैसा बनेगा, वो आहार के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको आंसर मिलेगा क्या अनियन गार्लिक का कि बताऊँ ज़्यादा कुछ? अनियन गार्लिक खाने से सेक्स डिज़ायर बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग जो हरे कृष्णा में रहते हैं या ब्राह्मण होते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। पुराने ज़माने में आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ, हरे कृष्ण को भूल जाओ, हरे कृष्ण तो भूल जाओ, पुराने ज़माने में रिपीट मैरिज नहीं करते थे, शादी बहुत जल्दी हुआ करती मालूम है ना, 12 साल में, कभी 7 साल में शादी होके 12 साल में फिर फर्स्ट टाइम मेंसेस आने के बाद में पति के घर में उनको भेजते थे, उसको बोलते हैं गौना, मतलब बहुत जल्दी जवान होने के पहले शादी हो जाती थी। कभी कभी शादी होने के बाद तुरंत 1 साल में पति की मृत्यु होती थी, मतलब पत्नी 12 साल की, पति 15 साल का, अभी जिंदगी भर वो ऐसे रहेगी विधवा, क्योंकि उस समय रिपीट मैरिज करने का, पुनर्विवाह का कोई चांस नहीं था। अभी उसको मरना भी नहीं, जीना तो है ना, उसको जिंदगी जीना है, उसका पूरा जिंदगी पड़ी उसकी 15 साल के आगे, 12 साल के आगे, पूरा 70 साल तक। तो सबसे पहले उसके वो बाल काटते थे, फ्लैट करते थे, क्योंकि बाल ये स्त्री के शरीर का एक आकर्षक हिस्सा है जो आदमियों के ध्यान को अट्रैक्ट करता है। किसी के लंबे बाल को तो आदमी देखे, अरे कितने लंबे बाल अच्छे हैं, वो सेक्सुअल अट्रैक्टिव फीचर है। तो पहला उसको काट देते थे ताकि उस पर कोई देखे नहीं उसको। सेकेंड चीज़, उसका मांसाहार बंद करते थे। और थर्ड चीज़, उसके आहार में से कोई चटपटा चीज़, मसालेदार चीज़, लहसुन प्याज बंद करते थे, ताकि उसके शरीर में स्वभाव से ही सेक्स डिज़ायर बढ़ेगी, जैसे वो जवान होती जाएगी वैसे सेक्स डिज़ायर बढ़ेगी। उसके द्वारा उसका चरित्र खराब नहीं होना चाहिए, कोई गलत आदमी आके उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको समाज के गलत दृष्टि से बचाने के लिए खुद के लिए आहार में अंतर करते थे। उसका फिलोसॉफी फंडामेंटल यही है, सेक्स डिज़ायर न बढ़े, क्योंकि उसका अगर सेक्स डिज़ायर बढ़ता है तो फिर वो वेश्या बनेगी, क्योंकि उसका पति मर चुका है, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए बुजुर्ग लोग उसका आहार चेंज करते थे ताकि उसका मन शांत रहे और वो घर पर ही रहे, पति नहीं इसलिए बाहर जाकर मस्ती ना करे। सिंपल प्रिंसिपल है ये, हाँ बहुत सोच समझ के किया हुआ प्रिंसिपल है। आहार से आदमी की मति बदलती है, स्वभाव बदलता है, उसके चरित्र भी बदलता है। हाँ अरे सॉरी, अभी इस पर मैं ख़त्म कर देता हूँ। शास्त्र में क्या लिखा है, बाइबल कहता है कि किसी को भी मारना नहीं चाहिए, दाओ शर्ट नॉट किल। भगवदगीता में क्या लिखा है, ममय वांछो जीवलोकी जीवभूत सनातन, सब जीव मेरे अंश हैं, तो हम उसको मार नहीं सकते। बाइबल कहता है किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए, भावना से भी नहीं करनी चाहिए, शरीर की जो बात छोड़ दो। और हदीस क्या बोलता है, जो कुरान का हिस्सा है, हदीस में क्या लिखा है, आपके पेट को मरे हुए जानवरों का शमशान घाट मत बनाओ। क्योंकि जब हम मांस खाते हैं तो मुंह से खाते हैं, जाता कहाँ है, पेट में, पेट में उसका हजम होता है और उसका जो खून बनता है वो सब शरीर को पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। तो अगर मांस पेट में गया, उसी का खून बना, सब शरीर में गया, मुर्दा शरीर कहाँ पहुंचता है, मुसलमान का कहाँ पहुंचता है, कब्रिस्तान में, हिंदू का कहाँ पहुंचता है, दफन, अपना दहन भूमि मतलब जलाने की जगह जाता है, शमशान घाट में। तो ये हम जब मरते हैं तो हमको शमशान घाट पहुंचाते हैं, और जब जानवर मरता है तो काट के उसका मसाला डाल के हम लोग कहाँ डालते हैं, पेट में, तो हमारा पेट क्या बन गया, शमशान घाट बन गया। और उस पेट से अगर सारे शरीर को शक्ति मिलती है तो सारा शरीर भी एक चलता फिरता शमशान घाट बन गया, क्योंकि सारे मुर्दा जानवर जो है वहाँ पहुँचते हैं मरने के बाद। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हदीस में लिखा है, हदीस में वो कहते हैं अपने शरीर को मुर्दा जानवरों का शमशान मत बनाओ। कितनी पते की बात बताइए, कितनी बड़ी बात बताइए, बंद करो। एनीवेज, ज़्यादा आपको कष्ट नहीं देंगे, अभी संक्षेप में आपको बताएंगे कि मांसाहार छोड़ने के बाद भी बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, चिंता मत करना, आपकी दुनिया की खुशी, जिंदगी की खुशी हम नहीं छीन रहे हैं। हाँ, जो गलत चीज़ है वो छीनने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी चीज़ जो है वो आपके जीवन में अभी भी है, हम लोग हरे कृष्ण वाले ना बहुत अच्छा अच्छा खाते हैं, मालूम है आपको, खाली मांस नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, चाय कॉफी नहीं पीते, लेकिन बाकी बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना हम लोग खाते हैं। अरे हमारे मंदिर में एक बार आओ आप, सबसे पहले हम मंदिर में गए थे केवल खाने के लिए गए थे, हाँ, क्योंकि हरे कृष्ण बहुत अच्छा खाना मिलता है, वर्ल्ड में फेमस है, किधर भी जाओ हरे कृष्ण में, गोविंदा में जाएंगे तो इतना बढ़िया खाना मिलता है ना, आप लोग मांसाहार भूल जाएंगे। जब मैं मांस खाया करता था मुझे प्रश्न था मैं छोड़ूंगा कैसे इसको, तो मेरा भक्त मुझे मिलने को आया तो बोला कि आप मंदिर में आ जाओ, वहाँ का प्रसाद खाओ। जब हमने प्रसाद खाया तो हमको वाकई में लगा कि मांस खाने की अभी इच्छा नहीं, मेरे को संतुष्ट हो गया मैं, जो मेरे खाने की जो इच्छा है ना, जबान को जो खाने की इच्छा है वो संतुष्ट हो गई पूरी, उसी तरह से मुझे मांस छोड़ना संभव हो गया। हाँ, प्रसाद लेने के बाद ही मुझे मांस छोड़ना संभव हो गया, नहीं तो मांस मेरा इतना अटैचमेंट था कि मैं छोड़ नहीं पाता था उसको। अरे क्या बताऊँ आपको, मैं हकीकत बताऊँ, सत्य बताऊँ मेरे बारे में, 1982 में एक साल ऐसा था कि मैं कम से कम एक सिटिंग में 1 किलो मटन खाता था, 1 किलो मिनिमम, उसके कम मैंने कोई खाया नहीं, 1 किलो मिनिमम चिकन और 1 किलो मिनिमम मटन, उसके कम मैंने कभी खाया ही नहीं। मेरे पैसे इकट्ठा करके फ्रेंड की माँ को देता था मैं, और वो 4 टिफिन के 4 कंटेनर भर के मांस बेचती थी मुझे, और मैं 15 चपाती राइस बैठ के पूरा अकेला खाता था फर्स्ट क्लास, इतना मुझे खाने की तीव्रता थी। लेकिन जिस दिन मैं मंदिर गया ना, तो मुझे समझ में आया कि ये सब है ना अनंत जन्मों के पापों का एंटेंगलमेंट है, मुझे फंसा देगा पूरा ये, तो मैंने तुरंत छोड़ दिया उसको, एक साथ में मांस मछली अंडा सब कुछ छोड़ दिया एक ही दिन के अंदर, डर के मारे छोड़ दिया कि मुझे मुर्गी और बकरी नहीं बनना है और कटना नहीं है बार बार। तो आप बोलेंगे सर आपने जो पहले खाया था उसका क्या हिसाब किताब है, नेचुरल ना, क्योंकि कर्म से हम लोग मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो सर आपने भक्ति तो बहुत सारा बहुत साल किया, बहुत पुरानी बात हो गई, आप खाते थे लेकिन कुछ साल तो आपने खाया ना, 1 साल 2 साल बहुत मछली मटन खाया था, उसका क्या होगा। ये प्रश्न मुझे भी था सर, मैंने मंदिर में पूछा मेरा क्या होगा, मुझे अभी छोड़ दिया सब कुछ, मैं अभी कोई खाऊंगा नहीं, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं जब भी करता हूँ भगवान के नाम का, लेकिन उस पाप से मुक्ति कैसे होगी सर मेरी। तो शास्त्र के आधार पर मुझे जवाब मिला कि जब हम सही रूप में विश्वास के साथ में ये छोड़ देते, दोबारा नहीं करते, ऐसा नहीं कि अभी कब छोड़ दिया माफ कर दिया दोबारा भी खा लिया, ऐसा नहीं, एक बार निर्णय कर ले कि अभी नहीं खाना इसके आगे, ये गलत है सब कुछ, ऐसा निश्चय करते हैं जब, और उसके बाद भगवान के नाम का जप करते हैं तो पुराने सारे पाप माफ़ हो जाते हैं एक ही झटके के अंदर। लेकिन अगर दोबारा किए ना आपने तो पुराने वाले सारे जोड़ देते हैं उसके अंदर। आप लोग कैसे रहते हैं, बच्चा गलती करता है, देखो गलती नहीं करना, हाँ मार दूंगी आपको, तो एक बार आपने उसको बोला और माफ़ कर दिया उसको, सेकेंड टाइम कर दिया तो आप यू विल पनिश हिम मोर और नॉट, और थर्ड टाइम किया फिर आपको ज़्यादा पनिशमेंट देंगे उसको आप, इज दैट राइट। तो माफ़ी तभी होती है जब एक बार हम लोग कहते हैं और उसको छोड़ देते हैं। जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में बताया है रिपेंट रिपेंट, प्रायश्चित करो, दोबारा मत करो पाप, मैं आपके पाप लेने को आया हूँ, सबके पाप ले लूँगा मैं, एक ही शर्त पर कि आप दोबारा वो पाप नहीं करेंगे। तो दोबारा नहीं करेंगे और भगवान का नाम लेंगे, इस शर्त पर हमारे पुराने पाप माफ़ किए जाते हैं। क्योंकि अनजाने में बहुत लोग गलती करते हैं, लेकिन जान लेने के बाद जो गलती करेगा उसको पहले से भी अधिक दंड मिलता है। इसलिए आपको हम ज्ञान दे रहे हैं इसी उद्देश्य से कि आप लोग वो गलती नहीं करेंगे। एक लंच में या डिनर में मांस खाकर अनेक जन्मों के पाप के भागीदार मत बनो, कुत्ता बिल्ली बकरी बनकर मत जियो, मत कटो और इतना कष्ट मत सहो, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। इंसान बन के रहो, शाकाहारी खाओ, और शाकाहारी खाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं शाकाहारी खाना भी पाप है, कि जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ वहाँ पाप होता है, तो करे क्या, खाना में छोड़ दे क्या, उपवास पूरा एंड तक। शाकाहारी अन्न को भगवान को अर्पण करना चाहिए, फिर वो प्रसाद बनता है, तो हम लोग प्रसाद खाते हैं। हम लोग शाकाहारी नहीं है सर, प्लीज़ आई एम नॉट अ वेजिटेरियन, मैं प्रसाद खाने वाला आदमी हूँ, क्योंकि मुझे भगवद्गीता का ज्ञान है और मैं समझ चुका हूँ कि शाकाहारी आदमी भी, शराबी आदमी खेती करता है, शराबी आदमी उसको इकट्ठा करता है, शराबी आदमी व्यभिचारी आदमी और जुआरी आदमी उसको ट्रांसपोर्ट करता है, बेचता है, सारे उनके पाप हमारे को लगते हैं। दादर में कभी गए आप मार्केट में? बड़ा ट्रक भर के गोभी आता है, फ्लावर आता है, उसके अंदर दारू पे आदमी सोया रहता है ऐसा, एक हाथ से बीड़ी पीता है और उसका ऐश भी डालते रहता है उसके ऊपर। फिर वो दादर मार्केट पहुँचता है, ए उठ रहे उठ लो सामान को उठाना है, फिर वही आदमी बीड़ी पीता है, बीड़ी ऐसा फेंकता है और शराब के नशे में सारा सब्जी इकट्ठा करता है और ट्रांसपोर्ट करता है दुकान के अंदर, तो सारे पाप जो है ना उस फल के अंदर आते हैं, वो हम खाते हैं उसको। लेकिन हम सब उस शाकाहारी अन्न के पाप के मुक्त कैसे होते हैं? यज्ञ शिष्टा सिंह संतो भुंजते सर्व किल विषय, उस शाकाहारी अन्न को हम भगवान को प्रेम से अर्पण करते हैं, वो फिर वो प्रसाद बनकर आता है, वो जब खाते हैं तो हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो आप बोलेंगे अच्छा है भगवान को अर्पण करने से सब पाप नष्ट होते हैं, तो हम चिकन मटन अंडा भगवान को अर्पण करेंगे प्रेम से? मैं सब बता रहा हूँ आपके मन में जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर पहले दे रहा हूँ मैं आपको। आपने कहा है कि जो भी अन्न भगवान को अर्पण करते हैं वो पाप मुक्त होता है और खाने वाला भी पाप से मुक्त हो जाता है, तो क्यों ना हम वही चिकन वही मटन वही अंडा भगवान को प्रेम से अर्पण करेंगे? भगवान खाएंगे क्या उसको? इज इट पॉसिबल? आप मुझे अपने घर में बुलाएंगे, सर आपका बर्थडे, अपने घर पे लंच को आइए, क्या खाते हैं आप? मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है, और बराबर उल्टा आपने खाना बनाया, चिकन बनाया मटन बनाया मेरे लिए, चिकन बिरयानी बनाई, सर आपके बर्थडे के लिए बनाया, मैं खाऊंगा क्या उसको? नहीं मैं खाऊंगा उसको। आप कितना भी प्रेम से बोलेंगे सर मैंने आपके लिए अपने हाथ से बनाया सर प्लीज़ एक दिन तो खाइए चिकन बिरयानी आपके बर्थडे के दिन, मैं फिर भी नहीं खाऊंगा उसको, क्योंकि वो जो मैं नहीं खाता वो मैं किसी भी तरह नहीं खाऊंगा। वैसे भगवान को आप बड़े प्रेम से अंडा खिलाएंगे मुर्गी खिलाएंगे तो वो खाएंगे क्या? वो नहीं स्वीकार करेंगे उसको, वो वही स्वीकार करेंगे जो उनको पसंद है। वो क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, मुझे प्रेम से आप पत्ता फूल पानी दूध अर्पण करो फिर मैं उसको स्वीकार करूंगा, आप उसको फिर प्रसाद के रूप में खा सकते हो। इसलिए हमारा जो फंडामेंटल है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, शाकाहारी खाना लो घर में बनाओ प्रेम से, हरे कृष्णा। लास्ट है, सॉरी अभी हो गया हमारा, ज्यादा आपको बोर नहीं करेंगे अभी। शाकाहारी अन्न खाओ, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद के रूप में ग्रहण करो और भगवान का नाम लो, बस सिंपल फॉर्मूला है, ज़्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं। कोई गीता भागवत पाठ मत करो उसका, जमता है उतना करो, लेकिन रोज प्रसाद ग्रहण करो, गलत आहार मत करो, पोषक शाकाहारी आहार बना दो, भगवान को प्रेम से भोग लगाओ और केवल प्रसाद खाओ, इस गले में से जो उतरेगा ना वो केवल प्रसाद होना चाहिए बस। वो करने से आप शाकाहार और मांसाहार के परे पहुंच जाओगे, उसके परे जाओगे आप, भक्त बनोगे आप। हाँ तो ये मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, मांसाहार लहसुन प्याज छोड़ने के बाद में क्या क्या वैरायटी बचती है खाने के लिए, उसका दर्शन दे रहा हूँ आपको। हाँ लंच का समय नज़दीक आ रहा है तो लेट भी हो रहा है, देखिए ये सब बनता है बिना लहसुन प्याज का। हाँ नॉनवेज के अलग बनता है ये देखो। और बाय द वे ये सब आप लोगों ने बनाया हुआ खाना है, स्टाफ लोगों ने बनाया हुआ फेस्टिवल में अर्पण किया हुआ खाना है, आपके हाथ से बना हुआ ये, स्टाफ मेंबर्स ने फेस्टिवल में बनाया हुआ खाना है, 501 301 155 देखिए है ना अट्रैक्टिव, मांस से कई ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये, आकर्षक है। ये देखो हम लोग हरे कृष्णा वाले जो है ना सब देश का बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं लेकिन मांस के अलावा खाते हैं बस इतना ही। देखो बंगाली, हाँ साउथ इंडियन सांबार, फिर ब्राज़ील फ्रेंच खाना, फिर ये इंडोनेशिया का खाना, फिर ये ग्रीक का खाना, ये अपना क्या है फेमस इटालियन पिज़्ज़ा, देखिए आप ये अपना महाराष्ट्र का पूरी। ये देखो सूप, हाँ पम्पकिन सूप, ये स्पेन का राइस स्पेनिश वेजिटेबल राइस, देखिए आप ब्रेड, और ये अपनी नरसिंह जयंती का भोग बनाया हुआ है, यहाँ पर केक बनाया हुआ है बिना एग का, शाकाहारी एगलेस केक वेरी ब्यूटीफुल एंड टेस्टी। ये देखिए देखते जाइए ऐसे अनंत प्रकार का खाना बनता है। थैंक यू वेरी मच, ज़्यादा कष्ट आपको नहीं देंगे, आपके लिए लंच रेडी है अभी आप लीजिए। एक ही आपको विनती है, छोटे से समय के आनंद के लिए जीवन को बर्बाद मत करना, बुद्धि से काम लेना। मांसाहार नहीं करने से आदमी मरता नहीं है लेकिन मांसाहार करने से जरूर मरता है जल्दी, वो हार्ट अटैक डायबिटीज़ हाइपरटेंशन से मृत्यु जल्दी आती है उसकी। शाकाहार से आयु बढ़ती है, शाकाहार से बल बढ़ता है, शाकाहार से स्वाद भी मिलता है। अन्न के तीन गुण होते हैं, एक है इट कैन गिव लॉन्ग लाइफ, इट शुड गिव स्ट्रेंथ, इट शुड गिव ऑल्सो टेस्ट, ऑल थ्री आर इम्पोर्टेंट. शाकाहारी अन्न में स्वाद, बल और आयु तीनों सम्मिलित हैं. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.